بسم الله الرحمن الرحيم
ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
الله کے نام سے जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम ये अल्लाह की किताब है, इसमें कोई संदेह नहीं। मार्गदर्शन है उन डरने वालों के लिए जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, जो रोजी हमने उनको दी है उसमें से खर्च करते हैं, जो किताब तुम पर उतारी गई है अर्थात कुरान, और जो किताबें तुमसे पहले उतारी गई थी उन सब पर ईमान लाते हैं और परलोक में विश्वास रखते हैं। ऐसे लोग अपने रब की ओर से सीधे मार्ग पर हैं और वही सफलता प्राप्त करने वाले हैं। जिन लोगों ने इन बातों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया उनके लिए बराबर है चाहे तुम उन्हें खबरदार करो या ना करो, वे तो किसी भी दशा में मानने वाले नहीं हैं। अल्लाह ने उनके दिलों और उनके कानों पर मुहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है, वे सख्त सजा के हकदार हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाए हैं, हालांकि वास्तव में वे ईमान वाले नहीं हैं। वे अल्लाह और ईमान लाने वालों के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, मगर वास्तव में वे खुद अपने ही को धोखे में डाल रहे हैं और उन्हें इसकी समझ नहीं है। उनके दिलों में एक रोग है जिसे अल्लाह ने और अधिक बढ़ा दिया, और जो झूठ वे बोलते हैं उसके फलस्वरूप उनके लिए दर्दनाक सजा है। जब कभी उनसे कहा गया कि जमीन पर बिगाड़ पैदा न करो तो उन्होंने यही कहा कि हम तो सुधार करने वाले हैं।
اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا
सावधान, वास्तव में यही लोग बिगाड़ पैदा करते हैं, मगर इन्हें समझ नहीं है। और जब उनसे कहा गया कि जिस तरह दूसरे लोग ईमान लाए हैं उसी तरह तुम भी ईमान लाओ, तो उन्होंने यही उत्तर दिया कि क्या हम मूर्खों की तरह ईमान लाएं? खबरदार, वास्तव में तो ये खुद मूर्ख हैं, मगर ये जानते नहीं हैं। जब ये ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं, और जब एकांत में अपने शैतानों से मिलते हैं तो कहते हैं कि वास्तव में तो हम तुम्हारे साथ हैं और इन लोगों से केवल मजाक कर रहे हैं। अल्लाह इनसे मजाक कर रहा है, वो इन्हें ढील दे रहा है, और ये अपनी सरकशी में अंधों की तरह भटकते चले जाते हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने मार्गदर्शन के बदले गुमराही खरीद ली है, किंतु ये सौदा इनके लिए लाभदायक नहीं है और ये हरगिज सही रास्ते पर नहीं है। इनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक आदमी ने आग जलाई और जब उसने सारे माहौल को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने इनकी आंखों की रोशनी छीन ली और इन्हें इस हाल में छोड़ दिया कि अंधियारियों में इन्हें कुछ सूझता नहीं। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, ये अब न पलटेंगे।
يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء
या फिर इनकी मिसाल यूं समझो कि आकाश से तेज वर्षा हो रही है और उसके साथ अंधेरी घटा और कड़क और चमक भी है। ये बिजली के कड़ाके सुनकर अपनी मौत के डर से कानों में उंगलियां ठूसे लेते हैं और अल्लाह सत्य के इन इनकार करने वालों को हर ओर से घेरे में लिए हुए है। चमक से इनकी दशा ये हो रही है कि मानो शीघ्र ही बिजली इनकी आंखों की रोशनी उचक ले जाएगी। जब तनिक कुछ रोशनी इन्हें महसूस होती है तो उसमें कुछ दूर चल लेते हैं और जब इन पर अंधेरा छा जाता है तो खड़े हो जाते हैं। अल्लाह चाहता तो इनकी सुनने और देखने की शक्ति बिल्कुल ही छीन लेता। निस्संदेह उसे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है।
लोगो, बंदगी इख्तियार करो अपने उस रब की जो तुम्हारा और तुमसे पहले जो लोग हुए हैं उन सब का पैदा करने वाला है। तुम्हारे बचने की आशा इसी प्रकार हो सकती है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए धरती का बिछौना बनाया, आकाश की छत बनाई, ऊपर से पानी बरसाया और उसके द्वारा हर प्रकार की पैदावार निकालकर तुम्हारे लिए रोजी जुटाई। अतः जब तुम ये जानते हो तो दूसरों को अल्लाह का प्रतिद्वंद्वी न ठहराओ। और अगर तुम्हें इस बात में संदेह है कि ये किताब जो हमने अपने बंदे पर उतारी है ये हमारी है या नहीं, तो इस जैसी एक ही सूरा बना लाओ, अपने मत के सारे ही लोगों को बुला लो, एक अल्लाह को छोड़कर बाकी जिस जिस की चाहो सहायता ले लो, अगर तुम सच्चे हो तो ये काम करके दिखाओ, लेकिन अगर तुमने ऐसा न किया और निश्चय ही कभी नहीं कर सकते, तो डरो उस आग से जिसका ईंधन बनेंगे इंसान और पत्थर, जो जुटाई गई है इनकार करने वालों के लिए। और ऐ पैगंबर, जो लोग इस किताब पर ईमान ले आएं और अपने कर्म ठीक कर लें, उन्हें खुशखबरी दे दो कि उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, उन बागों के फल रूप में दुनिया के फलों से मिलते जुलते होंगे। जब कोई फल उन्हें खाने को दिया जाएगा तो वे कहेंगे कि ऐसे ही फल इससे पहले दुनिया में हमको दिए जाते थे। उनके लिए वहां पाकीजा पत्नियां होंगी और वे वहां सदैव ही रहेंगे। हाँ, अल्लाह इससे बिल्कुल नहीं शर्माता कि मच्छर या उससे भी तुच्छ किसी चीज की मिसालें दे। जो लोग सत्य को स्वीकार करने वाले हैं वे इन्हीं मिसालों को देखकर जान लेते हैं कि ये सत्य है जो उनके रब ही की ओर से आया है, और जो मानने वाले नहीं हैं, वे इन्हें सुनकर कहने लगते हैं कि ऐसी मिसालों से अल्लाह का क्या संबंध। इस प्रकार अल्लाह एक ही बात से बहुतों को गुमराही में डाल देता है और बहुतों को सीधा मार्ग दिखा देता है, और उससे गुमराही में वो उन्हीं को डालता है जो फासिक अर्थात अवज्ञाकारी हैं, अल्लाह की प्रतिज्ञा को मजबूत बांध लेने के बाद तोड़ देते हैं। अल्लाह ने जिसे जोड़ने का आदेश दिया है उसे काटते हैं और धरती पर बिगाड़ पैदा करते हैं। वास्तव में यही लोग घाटे में हैं। तुम अल्लाह के साथ इनकार की नीति कैसे अपनाते हो, जबकि तुम निर्जीव थे, उसने तुम्हें जीवन प्रदान किया, फिर वही तुम्हारे प्राण ले लेगा, फिर वही तुम्हें पुनः जीवन प्रदान करेगा, फिर उसी की ओर तुम्हें पलट कर जाना है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए धरती की सारी चीजें पैदा की, फिर ऊपर की ओर रुख किया और सात आसमान ठीक तौर पर बनाए, और वो हर चीज का ज्ञान रखने वाला है। फिर तनिक उस समय की कल्पना करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा था कि मैं धरती में एक खलीफा अर्थात स्थानापन्न बनाने वाला हूं। उन्होंने निवेदन किया, क्या आप धरती में किसी ऐसे को नियुक्त करने वाले हैं जो उसकी व्यवस्था को बिगाड़ देगा और रक्तपात करेगा? आपकी तारीफ और प्रशंसा के साथ तस्बीह और आपकी पवित्रता का वर्णन तो हम कर ही रहे हैं। कहा, मैं जानता हूं जो कुछ तुम नहीं जानते। इसके बाद अल्लाह ने आदम को सारी चीजों के नाम सिखाए, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और कहा, यदि तुम्हारा विचार सही है कि किसी खलीफा की नियुक्ति से व्यवस्था बिगड़ जाएगी तो तनिक इन चीजों के नाम बताओ। उन्होंने कहा, ऐबों से पाक तो आप ही की हस्ती है, हमें तो बस उतना ही ज्ञान है जितना आपने हमको दे दिया है। वास्तव में सब कुछ जानने वाला और समझने वाला आपके सिवा कोई नहीं। फिर अल्लाह ने आदम से कहा, तुम इन्हें इनके नाम बताओ। जब उसने उनको इन सब के नाम बता दिए तो अल्लाह ने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं आकाशों और धरती के वे सारे तथ्य जानता हूं जो तुमसे छिपे हैं। जो कुछ तुम जाहिर करते हो वो भी मुझे मालूम है और जो कुछ तुम छिपाते हो उसे भी मैं जानता हूं। फिर जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे झुक जाओ तो सब झुक गए, मगर इबलीस ने इनकार किया। वो अपनी बड़ाई के घमंड में पड़ गया और अवज्ञाकारियों में शामिल हो गया। फिर हमने आदम से कहा, तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों जन्नत में रहो और यहाँ जी भर कर जो चाहो खाओ, किंतु इस पेड़ के निकट न जाना, नहीं तो जालिमों में गिने जाओगे। अंततः शैतान ने उन दोनों को उस पेड़ की ओर प्रेरित करके हमारे आदेश के अनुपालन से हटा दिया और उन्हें उस हालत से निकलवाकर छोड़ा जिसमें वे थे। हमने हुक्म दिया कि अब तुम सब यहां से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हें एक विशेष समय तक धरती में ठहरना और वहीं गुजर बसर करना है। उस समय आदम ने अपने रब से कुछ शब्द सीख कर तौबा की, जिसको उसके रब ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो बड़ा क्षमा करने वाला और दया करने वाला है। हमने कहा कि तुम सब यहाँ से उतर जाओ, फिर मेरी ओर से जो मार्गदर्शन तुम्हारे पास पहुँचे, तो जो लोग मेरे उस बताए मार्गदर्शन पर चलेंगे उनके लिए किसी भय और दुख का मौका न होगा, और जो उसे स्वीकार करने से इनकार करेंगे और हमारी आयतों को झुठलाएंगे, वे आग यानी नरक में जाने वाले हैं, जहाँ वे हमेशा रहेंगे। ए इसराइल की संतान, तनिक याद करो मेरी उस नेमत को जो मेरी ओर से तुम पर हुई। मेरे साथ तुम्हारी जो प्रतिज्ञा थी उसे तुम पूरा करो, तो मेरी जो प्रतिज्ञा तुम्हारे साथ थी उसे मैं पूरा करूं, और मुझ ही से तुम डरो, और मैंने जो किताब भेजी है उस पर ईमान लाओ। ये उस किताब की पुष्टि में है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद थी, अतः सबसे पहले तुम ही उसके इनकार करने वाले न बनो। थोड़े मूल्य पर मेरी आयतों को न बेच डालो और मेरे प्रकोप से बचो। असत्य का रंग चढ़ाकर सत्य को संदिग्ध न बनाओ और न जानते बूझते सत्य को छिपाने का प्रयास करो। नमाज कायम करो, जकात दो, और जो लोग मेरे आगे झुक रहे हैं उनके साथ तुम भी झुक जाओ। तुम दूसरों को तो नेकी का रास्ता अपनाने के लिए कहते हो, मगर अपने आप को भूल जाते हो। हालांकि तुम किताब का पाठ करते हो, क्या तुम बुद्धि से बिल्कुल ही काम नहीं लेते? सब्र और नमाज से मदद लो। बेशक नमाज एक बड़ा ही मुश्किल काम है, किंतु उन आज्ञाकारी बंदों के लिए मुश्किल नहीं है जो समझते हैं कि आखिरकार उन्हें अपने रब से मिलना और उसी की ओर पलट कर जाना है।
نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم।
اے اسرائیل کی سنتان، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میری اور سے تم پر ہوئی تھی، اور اس بات کو कि मैंने तुम्हें संसार की सारी जातियों पर श्रेष्ठता प्रदान की थी, और डरो उस दिन से जब कोई किसी के तनिक काम न आएगा और न किसी की ओर से सिफारिश कबूल होगी न किसी को फिदिया यानी जुर्माना लेकर छोड़ा जाएगा और न अपराधियों को कहीं से सहायता मिल सकेगी। याद करो वो समय जब हमने तुमको फिरौनियों की गुलामी से छुटकारा दिलाया, उन्होंने तुम्हें सख्त अजाब में डाल रखा था, तुम्हारे लड़कों को मार डालते थे और तुम्हारी लड़कियों को जीवित रहने देते थे और इस स्थिति में तुम्हारे रब की ओर से तुम्हारी बड़ी आजमाइश थी। याद करो वो समय जब हमने समुद्र फाड़कर तुम्हारे लिए रास्ता बनाया, फिर उसमें से तुम्हें सकुशल पार करा दिया, फिर वहीं तुम्हारी आंखों के सामने फिरौनियों को डुबो दिया। याद करो जब हमने मूसा को 40 दिन रात के प्रस्ताव पर बुलाया तो उसके पीछे तुम बछड़े को अपना पूज्य बना बैठे। उस समय तुमने बड़ी ज्यादती की थी, मगर इस पर भी हमने तुम्हें क्षमा कर दिया कि शायद अब तुम कृतज्ञता दिखलाओ। याद करो कि ठीक उस समय जब तुम ये जुल्म कर रहे थे, हमने मूसा को किताब और कसौटी प्रदान की ताकि तुम उसके द्वारा सीधी राह पा सको। याद करो जब मूसा ये नेमत लिए हुए पलटा तो उसने अपनी जाति वालों से कहा कि लोगो, तुमने बछड़े को पूज्य बनाकर अपने साथ बड़ा अन्याय किया है, अतः तुम लोग अपने पैदा करने वाले के आगे तौबा करो और अपनों को मारो, इसी में तुम्हारे पैदा करने वाले की दृष्टि में तुम्हारी भलाई है। उस समय तुम्हारे सृष्टा ने तुम्हारी क्षमा याचना स्वीकार कर ली कि वो बड़ा क्षमाशील और दयावान है। याद करो जब तुमने मूसा से कहा था कि हम तुम्हारे कहने का हरगिज विश्वास न करेंगे जब तक कि अपनी आंखों से खुले तौर पर अल्लाह को न देख लें। उस समय तुम्हारे देखते देखते एक जबरदस्त कड़के ने तुमको आ लिया, तुम बेजान होकर गिर चुके थे, मगर फिर हमने तुमको जिला उठाया, शायद कि इस उपकार के बाद तुम शुक्रगुजार बन जाओ। हमने तुम पर बादल की छांव की, मन्न और सलवा का भोजन तुम्हारे लिए जुटाया और तुमसे कहा कि जो स्वच्छ चीजें हमने तुम्हें प्रदान की हैं उन्हें खाओ, मगर तुम्हारे पूर्वजों ने जो कुछ किया वो हम पर उनका जुल्म न था, बल्कि उन्होंने आप अपने ही ऊपर जुल्म किया।
فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا
फिर याद करो जब हमने कहा था कि ये बस्ती जो तुम्हारे सामने है इसमें प्रवेश करो, इसकी पैदावार जिस प्रकार चाहो मजे से खाओ, मगर बस्ती के दरवाजे में सजदा करते हुए प्रवेश करना और कहते जाना, हित्ततुन हित्ततुन, हम तुम्हारी खताओं को माफ करेंगे और सुकर्मियों पर और अधिक अनुग्रह करेंगे। मगर जो बात उनसे कही गई थी इन जालिमों ने उसे बदल कर कुछ और कर दिया। अंत में हमने जुल्म करने वालों पर आकाश से अजाब उतारा। ये सजा थी उन नाफरमानियों की जो वे कर रहे थे। याद करो जब मूसा ने अपनी जाति वालों के लिए पानी की प्रार्थना की तो हमने कहा कि अमुक चट्टान पर अपनी लाठी मारो, अतएव उससे 12 स्रोत फूट निकले और हर कबीले ने जान लिया कि कौन सी जगह उसके पानी लेने की है। उस समय ये आदेश दे दिया गया था कि अल्लाह की दी हुई रोजी खाओ पियो और धरती पर बिगाड़ ना फैलाते फिरो। याद करो जब तुमने कहा था कि ए मूसा, हम एक ही प्रकार के खाने पर संतोष नहीं कर सकते, अपने रब से प्रार्थना करो कि हमारे लिए धरती की पैदावार साग तरकारी गेहूं लहसुन प्याज दाल आदि पैदा करे। तो मूसा ने कहा, क्या एक उत्तम चीज को छोड़कर तुम घटिया दर्जे की चीजें लेना चाहते हो? अच्छा, किसी शहरी आबादी में जा रहो, जो कुछ तुम मांगते हो वहां मिल जाएगा। आखिरकार इस दशा को पहुंच गए कि अपमान एवं अपयश और गिरावट एवं बदहाली उन पर थोप दी गई और वे अल्लाह के अजाब में घिर गए। ये नतीजा था इसका कि वे अल्लाह की आयतों का इनकार करने लगे थे और पैगंबरों की अकारण हत्या करने लगे थे। ये नतीजा था उनकी नाफरमानियों का और इस बात का कि वे धार्मिक मर्यादाओं से निकल निकल जाते थे। विश्वास रखो कि अरबी नबी को मानने वाले हों या यहूदी ईसाई हों या साबी, जो भी अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान लाएगा और अच्छा कर्म करेगा उसका बदला उसके रब के पास है और उसके लिए किसी डर और रंज का मौका नहीं है। याद करो वो समय जब हमने तूर को तुम पर उठाकर तुमसे पक्का वचन लिया था और कहा था कि जो ग्रंथ हम तुम्हें दे रहे हैं उसे मजबूती के साथ थामना और जो आदेश और निर्देश उसमें लिखे हैं उन्हें याद रखना। इसी माध्यम से आशा की जा सकती है कि तुम तकवा यानी धर्म परायणता की नीति पर चल सकोगे। मगर इसके बाद तुम अपने वचन से फिर गए। इस पर भी अल्लाह की कृपा और उसकी दयालुता ने तुम्हारा साथ न छोड़ा, वरना तुम कभी के तबाह हो चुके होते। फिर तुम्हें अपनी जाति के उन लोगों का किस्सा तो मालूम ही है जिन्होंने शब्द का नियम तोड़ा था। हमने उन्हें कह दिया कि बंदर बन जाओ और इस दशा में रहो कि हर ओर से तुम पर धुतकार फिटकार पड़े। इस तरह हमने उनके अंजाम को उस जमाने के लोगों और बाद की आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा सामग्री और अल्लाह से डरने वालों के लिए नसीहत बनाकर छोड़ा। फिर वो घटना याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुम्हें एक गाय ज़बह करने का हुक्म देता है। कहने लगे, क्या तुम हमसे मजाक करते हो? मूसा ने कहा, मैं इससे अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि अज्ञानियों जैसी बातें करूं। बोले, अच्छा अपने रब से प्रार्थना करो कि वो हमें उस गाय के बारे में कुछ विस्तार से बताए। मूसा ने कहा, अल्लाह कहता है कि वो गाय ऐसी होनी चाहिए जो न बूढ़ी हो न बछिया बल्कि मध्य आयु की हो। अतः जो हुक्म दिया जाता है उसका पालन करो। फिर कहने लगे कि अपने रब से ये और पूछ दो कि उसका रंग कैसा हो। मूसा ने कहा, वो कहता है कि पीले रंग की गाय होनी चाहिए जिसका रंग ऐसा चटकीला हो कि देखने वालों का मन प्रसन्न हो जाए। फिर बोले, अपने रब से साफ साफ पूछकर बताओ कैसी गाय चाहिए, हमें उसके निर्धारण में संदेह हो गया है। अल्लाह ने चाहा तो हम उसका पता पा लेंगे। मूसा ने जवाब दिया, अल्लाह कहता है कि वो ऐसी गाय है जिससे सेवा कार्य नहीं लिया जाता, न जमीन जोतती है न पानी खींचती है, भली चंगी और बेदाग है। इस पर वे पुकार उठे कि हाँ, अब तुमने ठीक पता बताया है। फिर उन्होंने उसे ज़बह किया, वरना वे ऐसा करते मालूम न होते थे। وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ
और तुम्हें याद है वो घटना जब तुमने एक व्यक्ति की जान ली थी, फिर उसके बारे में झगड़ने लगे और एक दूसरे पर कत्ल का इल्जाम थोपने लगे थे, और अल्लाह ने फैसला कर लिया था कि जो कुछ तुम छिपाते हो उसे खोल कर रख देगा। उस समय हमने हुक्म दिया कि मारे गए व्यक्ति की लाश को उसके एक भाग से चोट करो। देखो, इस प्रकार अल्लाह मुर्दों को जीवन दान देता है और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो, किंतु ऐसी निशानियां देख लेने के बाद भी अंततः तुम्हारे दिल सख्त हो गए, पत्थरों की तरह सख्त, बल्कि सख्ती में कुछ उनसे भी बढ़े हुए, क्योंकि पत्थरों में से तो कोई ऐसा भी होता है जिसमें से स्रोत फूट बहते हैं, कोई फटता है और उसमें से पानी निकल आता है, और कोई अल्लाह के डर से कांप कर गिर भी पड़ता है। अल्लाह तुम्हारी करतूतों से बेखबर नहीं है।
فَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ تمہارے آمنترن کو مان لیں گے، جبکہ इनमें से एक गिरोह की नीति ये रही है कि उसने अल्लाह की वाणी सुनी और फिर खूब समझ बूझ कर जानते हुए उसमें रद्दो बदल किया। ये अल्लाह के रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैह वसल्लम पर ईमान लाने वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी उन्हें मानते हैं, और जब आपस में एक दूसरे से एकांत में बातचीत होती है तो कहते हैं कि मूर्ख हो गए हो, इन लोगों को वे बातें बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर खोली हैं, ताकि तुम्हारे रब के पास तुम्हारे मुकाबले में उन्हें प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करें।
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.
اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں अल्लाह को सब बातों की खबर है। इनमें एक दूसरा गिरोह उम्मियों का है जिनको अल्लाह की किताब का तो ज्ञान नहीं, बस अपनी निराधार आशाओं और कामनाओं को लिए बैठे हैं और केवल अटकल पर चले जा रहे हैं, तो विनाश और तबाही है उन लोगों के लिए जो अपने हाथों से धर्म विधान संबंधी लेख लिखते हैं फिर लोगों से कहते हैं कि ये अल्लाह के पास से आया हुआ है ताकि इसके बदले में थोड़ा सा लाभ उठा लें। उनके हाथों का ये लिखा भी उनके लिए तबाही का सामान है और उनकी ये कमाई भी उनके लिए विनाश का कारण।
قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون
وہ کہتے ہیں کہ نرک کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں سوائے اس کے کہ کچھ تھوڑے دنوں کی سزا مل جائے تو مل جائے ان سے پوچھو کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی وچن لے لیا ہے جس کے ورد وہ نہیں کر سکتا یا بات یہ ہے کہ تم اللہ سے لگا کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے سمبند میں تمہیں کیا نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے آخر تمہیں نرک کی آگ کیوں نہ چھوئے گی جو بھی برائی کمائے گا اور اپنی غلط کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ جہنمی ارتھات نرک میں جانے والا ہے اور نرک ہی میں وہ ہمیشہ رہے گا اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور اچھے کرم کریں گے وہی جنتی ارتھات سورگ والے ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
یاد کرو اسرائیل کی سنتان سے ہم نے پکا وچن لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرنا ماں باپ کے ساتھ ناتے داروں کے ساتھ اناتھوں اور دین دکھیوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا لوگوں سے بھلی بات کہنا نماز قائم کرنا اور زکات دینا مگر تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب اس وچن سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو پھر تنک یاد کرو ہم نے تم سے پکا وچن لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا تم نے اس کو سویکار کیا تھا تم خود اس پر گواہ ہو
ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ
مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندھوں کی ہتیا کرتے ہو اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے گھر بار کر دیتے ہو ظلم اور زیادتی کے ساتھ ان کے ورد جتھے بندیاں کرتے ہو اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو جبکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ سانسارک جیون میں بھی اپمانت اور ترسکرت ہو کر رہیں اور آخرت یعنی پرلوک میں کٹھورتم یاتنا کی اور پھیر دیے جائیں اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر سانسارک جیون خرید لیا ہے اتہ نہ ان کی سزا میں کوئی کمی ہوگی اور نہ انہیں کوئی سہایتا پہنچ سکے گی
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ
हमने मूसा को किताब दी, उसके बाद लगातार रसूल भेजे, अंत में मरियम के बेटे ईसा को स्पष्ट निशानियां देकर भेजा और पवित्र आत्मा से उसकी सहायता की। फिर ये तुम्हारा क्या ढंग है कि जब भी कोई रसूल तुम्हारी अपनी इच्छाओं के खिलाफ कोई चीज लेकर तुम्हारे पास आया तो तुमने उसके मुकाबले में सरकशी ही की, किसी को झुठलाया और किसी की हत्या कर डाली। वे कहते हैं हमारे दिल सुरक्षित हैं। नहीं, सच बात यह है कि उनके इनकार के कारण उन पर अल्लाह की फिटकार पड़ी है, इसलिए वे कम ही ईमान लाते हैं।
وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين
اور اب जो एक किताब अल्लाह की ओर से उनके पास आई है उसके साथ उनका क्या व्यवहार है, इसके बावजूद कि वो उस किताब की पुष्टि करती है जो उनके पास पहले से मौजूद थी, इसके बावजूद कि उसके आने से पहले वे खुद इनकार करने वालों के मुकाबले में विजय और सहायता की प्रार्थनाएं किया करते थे, परंतु जब वो चीज आ गई जिसे वे पहचान भी गए तो उन्होंने उसे मानने से इनकार कर दिया। अल्लाह की लानत इन इनकार करने वालों पर। कैसा बुरा साधन है जिससे ये अपने जी की तसल्ली हासिल करते हैं कि जो आदेश अल्लाह ने भेजा है उसे स्वीकार करने से केवल इस हठ के कारण इनकार कर रहे हैं कि अल्लाह ने अपने उदार दान, प्रकाशना और पैगंबरी से अपने जिस बंदे को खुद चाहा नवाज दिया। अतः अब ये प्रकोप पर प्रकोप के अधिकारी हो गए हैं और ऐसे इनकार करने वालों के लिए घोर अपमानजनक सजा निश्चित है।
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين
جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے اتارا ہے اس پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو کیول اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے یہاں ارثات اسرائیل کے ونشج میں اتری ہے اس پریدھی سے باہر جو کچھ آیا ہے उसे मानने से वे इनकार करते हैं, जबकि वो सत्य है और उस शिक्षा की पुष्टि और समर्थन कर रहा है जो उनके यहाँ पहले से मौजूद थी। अच्छा, इनसे कहो, यदि तुम उस शिक्षा ही के मानने वाले हो जो तुम्हारे यहाँ आई थी, तो इससे पहले अल्लाह के उन पैगंबरों की जो खुद इसराइल के वंशज में पैदा हुए थे क्यों हत्या करते रहे।
وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ.
تمہارے پاس मूसा कैसी कैसी स्पष्ट निशानियों के साथ आया, फिर भी तुम ऐसे जालिम थे कि उसके पीठ मोड़ते ही बछड़े को पूज्य बना बैठे। फिर तनिक उस वचन को याद करो जो तूर को तुम्हारे ऊपर उठाकर हमने तुमसे लिया था। हमने ताकीद की थी कि जो आदेश हम दे रहे हैं उनका मजबूती के साथ पालन करो और कान लगाकर सुनो। तुम्हारे पूर्वजों ने कहा कि हमने सुन लिया मगर मानेंगे नहीं, और उनकी असत्य प्रियता का हाल ये था कि दिलों में उनके बछड़ा ही बसा हुआ था। कहो, यदि तुम ईमान वाले हो तो ये अनोखा ईमान है जो ऐसी बुरी बातों के लिए तुम्हें हुक्म देता है।
قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون.
إنسي كهو كي يدي واسطو مي الله كي نكت परलोक का घर सारे मनुष्यों को छोड़कर केवल तुम्हारे लिए ही आरक्षित है, तब तो तुम्हें चाहिए कि मौत की तमन्ना करो। यदि तुम अपने इस विचार में सच्चे हो, विश्वास रखो कि ये कभी इसकी तमन्ना न करेंगे, इसलिए कि अपने हाथों से जो कुछ कमाकर इन्होंने वहां भेजा है उसकी यही अपेक्षा है कि ये वहां जाने की तमन्ना न करें। अल्लाह इन जालिमों को खूब जानता है। तुम इन्हें सबसे बढ़कर जीने का लोभी पाओगे, यहाँ तक कि ये इस संबंध में मुशरिकों यानी बहुदेव वादियों से भी बढ़े हुए हैं। इनमें से एक एक आदमी ये चाहता है कि किसी तरह हजार वर्ष जिए, हालांकि लंबी उम्र किसी हालत में भी उसे अजाब से तो नहीं बचा सकती। जैसे कुछ कर्म ये कर रहे हैं अल्लाह तो उन्हें देख ही रहा है।
كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين.
इनसे कहो कि जो कोई जिब्रील से दुश्मनी रखता हो उसे मालूम होना चाहिए कि जिब्रील ने अल्लाह ही के हुक्म से ये कुरान तुम्हारे दिल पर उतारा है जो पहले आई हुई किताबों की पुष्टि और समर्थन करता है, और ईमान लाने वालों के लिए मार्गदर्शन और सफलता की खुशखबरी बनकर आया है। यदि जिब्रील से इनकी दुश्मनी का कारण यही है तो कह दो कि जो अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसके रसूलों और जिब्रील और मीकाईल के दुश्मन हैं, अल्लाह उन इनकार करने वालों का दुश्मन है।
ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون.
हमने तुम्हारी ओर ऐसी आयतें उतारी हैं जो साफ साफ सत्य को जाहिर करने वाली हैं, और उनके अनुपालन से केवल वही लोग इनकार करते हैं जो उल्लंघनकारी हैं। क्या सदैव ऐसा ही नहीं होता रहा है कि जब इन्होंने कोई वचन दिया तो इनमें से एक न एक गिरोह ने उसे अवश्य ही पीठ पीछे डाल दिया, बल्कि उनमें से बहुतेरे ऐसे ही हैं जो सच्चे दिल से ईमान नहीं लाते।
نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون।
और जब उनके पास अल्लाह की ओर से कोई रसूल उस किताब की पुष्टि और समर्थन करता हुआ आया जो इनके यहाँ पहले से मौजूद थी, तो इन किताब वालों में से एक गिरोह ने अल्लाह की किताब को इस तरह पीठ पीछे डाल दिया मानो वे कुछ जानते ही नहीं।
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبتهم من عند الله خير لو كانوا يعلمون।
और लगे उन चीजों का अनुसरण करने जो शैतान सुलेमान के राज्य का नाम लेकर पेश किया करते थे, हालांकि सुलेमान ने कभी कुफ्र नहीं किया। कुफ्र में तो वे शैतान पड़े थे जो लोगों को जादूगरी की शिक्षा देते थे। वे पीछे पड़े उस चीज के जो बाबिल में दो फरिश्तों हारूत और मारूत पर उतारी गई थी। हालांकि वे फरिश्ते जब भी किसी को उसकी शिक्षा देते थे तो पहले स्पष्ट रूप से सावधान कर दिया करते थे कि देख, हम केवल एक आजमाइश हैं, तू कुफ्र में ना पड़। फिर भी ये लोग उनसे वही चीज सीखते थे जिससे पति और पत्नी में जुदाई डाल दें। ये खुली हुई बात थी कि अल्लाह की इजाजत के बिना वे इसके द्वारा किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, किंतु फिर भी वे ऐसी चीज सीखते थे जो खुद उनके लिए लाभकारी नहीं बल्कि हानिकारक थी। और वे खूब जानते थे कि जो इस चीज का खरीदार बना उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। कितना बुरा उपभोग्य था जिसका उन्होंने अपनी जानों के बदले सौदा किया। क्या ही अच्छा होता यदि वे जानते होते, यदि वे ईमान और तकवा यानी परहेजगारी को अपनाते, तो अल्लाह के यहाँ इसका जो बदला मिलता वो उनके लिए अधिक अच्छा था। क्या ही अच्छा होता कि उन्हें इसकी खबर होती।
या अय्युहा الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم।
ऐ ईमान लाने वालों, राईना ना कहा करो बल्कि उनजुरना कहो और ध्यान से बात को सुनो। ये इनकार करने वाले तो दुखदायी अजाब के हकदार हैं। ये लोग जिन्होंने सत्य संदेश को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, चाहे किताब वालों में से हों या मुशरिक अर्थात बहुदेववादी हों, हरगिज ये नहीं चाहते कि तुम्हारे रब की ओर से तुम पर कोई भलाई उतरे, मगर अल्लाह जिसको चाहता है अपनी कृपा के लिए चुन लेता है और वो बड़ा उदार दान करता है।
मा ननसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाति बिखैरिन मिन्हा औ मिस्लिहा अलम तअलम अन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ।
हम अपनी जिस आयत को मनसूख यानी निरस्त कर देते हैं या भुला देते हैं, उसकी जगह उससे बेहतर लाते हैं या कम से कम वैसी ही। क्या तुम जानते नहीं हो कि अल्लाह को हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है? क्या तुम्हें पता नहीं कि धरती और आकाशों का शासन अल्लाह ही के लिए है और उसके सिवा कोई तुम्हारा संरक्षक और तुम्हारा मददगार नहीं है? फिर क्या तुम अपने रसूल से उसी प्रकार के प्रश्न करना और मांग करना चाहते हो जैसा कि इससे पहले मूसा से किए जा चुके हैं? हालांकि जिस आदमी ने ईमान की रीति को कुफ्र की रीति से बदल लिया, वो सीधे रास्ते से भटक गया।
حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله بصير।
किताब वालों में बहुतेरे लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह तुम्हें ईमान से फेर कर फिर कुफ्र की ओर पलटा ले जाएं। हालांकि सत्य उन पर प्रकट हो चुका है, किंतु अपने जी की ईर्ष्या के कारण तुम्हारे लिए उनकी ये इच्छा है। इसके बदले में तुम माफी और दरगुजर से काम लो, यहाँ तक कि अल्लाह खुद ही अपना फैसला लागू कर दे। इत्मीनान रखो कि अल्लाह को हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। नमाज कायम करो और जकात दो। तुम अपने पारलौकिक अर्थात आखिरत के जीवन के लिए जो भलाई कमाकर आगे भेजोगे, अल्लाह के यहाँ उसे मौजूद पाओगे। जो कुछ तुम करते हो वो सब अल्लाह की नजर में है।
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ।
उनका कहना है कि कोई आदमी जन्नत में न जाएगा जब तक वो यहूदी न हो या ईसाइयों के विचार के अनुसार ईसाई न हो। ये उनकी तमन्नाएं हैं। उनसे कहो अपना सबूत पेश करो यदि तुम अपने दावे में सच्चे हो। वास्तव में न तुम्हारी कुछ विशेषता है न किसी और की। सत्य ये है कि जो भी अपने आप को अल्लाह के आज्ञा पालन में समर्पित कर दे और व्यवहारतः नेकी की राह अपनाए, उसके लिए उसके रब के पास उसका बदला है और ऐसे लोगों के लिए किसी भय या शोक का कोई अवसर नहीं।
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر ذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم.
يهودي कहते हैं ईसाइयों के पास कुछ नहीं, ईसाई कहते हैं यहूदियों के पास कुछ नहीं, हालांकि दोनों ही किताब पढ़ते हैं और इसी प्रकार के दावे उन लोगों के भी हैं जिनके पास किताब का ज्ञान नहीं है। ये मतभेद जिनमें ये लोग पड़े हुए हैं, इनका फैसला अल्लाह कयामत के दिन कर देगा। और उस व्यक्ति से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की इबादत की इन जगहों में उसके नाम की याद से रोके और उन्हें उजाड़ने पर उतारू हो। ऐसे लोग इस योग्य हैं कि इन इबादत घरों में कदम न रखें, और यदि वहां जाएं भी तो डरते हुए जाएं। उनके लिए संसार में रुसवाई है और आखिरत में बड़ी यातना। पूरब और पश्चिम सब अल्लाह के हैं, जिस ओर भी तुम रुख करोगे उसी ओर अल्लाह का रुख है। अल्लाह सर्वव्यापी और सब कुछ जानने वाला है।
وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم.
उनका कहना है कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया है, अल्लाह पाक है इन बातों से। वास्तविक तथ्य ये है कि धरती और आकाशों में पाई जाने वाली सभी चीजों का वो मालिक है, सब के सब उसके आज्ञाकारी हैं। वो आकाशों और धरती का ईजाद करने वाला है, और जिस बात का वो फैसला करता है उसके लिए बस वो आदेश देता है कि हो जा, और वो हो जाती है। जिन्हें ज्ञान नहीं वे कहते हैं कि अल्लाह खुद हमसे बात क्यों नहीं करता, या कोई निशानी हमारे पास क्यों नहीं आती। ऐसी ही बातें इनसे पहले लोग भी किया करते थे। इन सब अगले पिछले गुमराहों की मनोवृत्तियां एक जैसी हैं। विश्वास करने वालों के लिए तो हम निशानियां साफ साफ स्पष्ट कर चुके हैं। इससे बढ़कर निशानी क्या होगी कि हमने तुमको सत्य ज्ञान के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा। अब जो लोग नरक से संबंध जोड़ चुके हैं उनकी ओर से तुम उत्तरदायी नहीं हो।
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
يهودي اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ صاف کہہ دو کہ مارگ بس وہی ہے जो अल्लाह ने बताया है, वरना यदि उस ज्ञान के बाद जो तुम्हारे पास आ चुका है तुमने उनकी इच्छाओं का अनुसरण किया तो अल्लाह की पकड़ से बचाने वाला कोई दोस्त और मददगार तुम्हारे लिए नहीं है। जिन लोगों को हमने किताब दी है
वे उसे उस तरह पढ़ते हैं जैसा कि पढ़ने का हक है। वे इस कुरान पर सच्चे दिल से ईमान ले आते हैं और जो इसके साथ इनकार की नीति अपनाएं, वही वास्तव में नुकसान उठाने वाले हैं।
या बनी इस्राइल अज़्कुरु निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون।
اے اسرائیل کی سنتان، یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تمہیں دی تھی، اور یہ کہ میں نے تمہیں سنسار کی سمست جاتیوں پر شیشتا پردان کی تھی، और डरो उस दिन से जब कोई किसी के तनिक भी काम ना आएगा, ना किसी से कोई अर्थ दंड यानी जुर्माना स्वीकार किया जाएगा, ना कोई सिफारिश ही आदमी को फायदा पहुंचा सकेगी और ना अपराधियों को कहीं से कोई सहायता पहुंच सकेगी।
وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود।
याद करो कि जब इब्राहिम को उसके रब ने कुछ बातों में आजमाया और वो उन सब में पूरा उतर गया, तो उसने कहा, मैं तुझे सब लोगों का पेशवा बनाने वाला हूँ। इब्राहिम ने निवेदन किया, और क्या मेरी संतान से भी यही वादा है? उसने उत्तर दिया, मेरा वादा जालिमों के बारे में नहीं है, और ये कि हमने इस घर यानी काबा को लोगों के लिए केंद्र और शांति की जगह ठहराया था और लोगों को आदेश दिया था कि इब्राहिम जहां इबादत के लिए खड़ा होता है उस जगह को स्थायी रूप से नमाज की जगह बना लो, और इब्राहिम और इस्माइल को ताकीद की थी कि मेरे इस घर को तवाफ यानी परिक्रमा और एतिकाफ करने वालों और झुकने वालों और सजदा करने वालों के लिए शुद्ध यानी पाक रखो।
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم।
और ये कि इब्राहिम ने प्रार्थना की, ऐ मेरे रब, इस नगर को शांतिमय नगर बना दे, और इसके निवासियों में से जो अल्लाह और आखिरत को माने उन्हें हर प्रकार के फलों की रोजी दे। जवाब में उसके रब ने कहा, और जो न मानेगा, अल्प सांसारिक जीवन की सामग्री तो मैं उसे भी दूंगा, किंतु अंत में उसे जहन्नम के अजाब की ओर घसीटूंगा, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। और याद करो, इब्राहिम और इस्माइल जब इस घर की दीवारें उठा रहे थे तो दुआ करते जाते थे, ऐ हमारे रब, हमसे ये सेवा स्वीकार कर ले, तू सबकी सुनने और सब कुछ जानने वाला है। ऐ रब, हम दोनों को अपना मुस्लिम यानी आज्ञाकारी बना। हमारी संतति से एक ऐसी कौम उठा जो तेरी मुस्लिम अर्थात आज्ञाकारी हो। हमें अपनी उपासना के तरीके बता और हमारी कोताहियों को माफ कर। तू बड़ा माफ करने वाला और दयावान है। और ऐ हमारे रब, इन लोगों में खुद इन्हीं की कौम से एक रसूल उठाना जो इन्हें तेरी आयतें सुनाए, इनको किताब और समझ की शिक्षा दे और इनके जीवन संवारे। तू बड़ा प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है।
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين
اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے جس نے خود اپنے آپ کو मूर्खता और अज्ञान में ग्रस्त कर लिया हो, उसके सिवा कौन ये हरकत कर सकता है। इब्राहिम तो वो व्यक्ति है जिसको हमने संसार में अपने कार्य के लिए चुन लिया था और परलोक में उसकी गिनती अच्छों में होगी। उसका हाल ये था कि जब उसके रब ने उससे कहा मुस्लिम अर्थात आज्ञाकारी हो जा, तो उसने तुरंत कहा मैं जगत के स्वामी का मुस्लिम अर्थात आज्ञाकारी हो गया।
وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون
اسی طریقے پر چلنے کی تاکید اس نے اپنی اولاد کو کی تھی اور اسی کی وصیت یعقوب اپنی سنتان کو کر گیا تھا اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں اللہ نے تمہارے لیے یہی دھرم پسند کیا ہے अतः मरते समय तक मुस्लिम अर्थात आज्ञाकारी ही रहना। फिर क्या तुम उस समय मौजूद थे जब याकूब इस संसार से विदा हो रहा था? उसने मरते समय अपने बेटों से पूछा, बच्चों मेरे पीछे तुम किसकी बंदगी करोगे? उन सब ने उत्तर दिया, हम उसी एक इलाह यानी उपास्य की बंदगी करेंगे जिसे आपने और आपके पूर्वज इब्राहिम इस्माइल और इसहाक ने इलाह यानी उपास्य माना है और हम उसी के मुस्लिम अर्थात आज्ञाकारी हैं। वे कुछ लोग थे जो जा चुके, जो कुछ उन्होंने कमाया वो उनके लिए है और जो कुछ तुम कमाओगे वो तुम्हारे लिए है। तुमसे ये ना पूछा जाएगा कि वे क्या करते थे।
وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله
ونحن له عابدون। यहूदी कहते हैं यहूदी हो तो सीधा मार्ग पाओगे, ईसाई कहते हैं ईसाई हो तो सीधा मार्ग मिलेगा। उनसे कहो नहीं, बल्कि सबको छोड़कर इब्राहीम का पंथ, और इब्राहीम बहुदेववादियों में से न था। मुसलमानों कहो कि हम ईमान लाए अल्लाह और उस मार्गदर्शन पर जो हमारी ओर उतरा है, और जो इब्राहीम इस्माइल इसहाक याकूब और याकूब की संतान की ओर उतरा था, और जो मूसा और ईसा और दूसरे सभी पैगंबरों को उनके रब की ओर से दिया गया था। हम उनके बीच कोई अंतर नहीं करते, और हम अल्लाह के मुस्लिम यानी आज्ञाकारी हैं। फिर यदि वे उसी तरह ईमान लाएं जिस तरह तुम ईमान लाए हो तो सीधे मार्ग पर हैं, और अगर इससे मुंह फेरें तो खुली बात है कि वे हठधर्मी में पड़ गए हैं। अतः विश्वास रखो कि उनके मुकाबले में अल्लाह तुम्हारी सहायता के लिए काफी है, वो सब कुछ सुनता और जानता है। कहो अल्लाह का रंग इख्तियार करो, उसके रंग से अच्छा और किसका रंग होगा, और हम उसी की बंदगी करने वाले लोग हैं।
قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ
اے نبی ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہمارے کرم ہمارے لیے ہیں تمہارے کرم تمہارے لیے اور ہم अल्लाह ही के लिए अपनी बंदगी खालिस कर चुके हैं। या फिर तुम्हारा कहना यह है कि इब्राहीम इस्माइल इसहाक याकूब और याकूब की औलाद सब के सब यहूदी थे या ईसाई थे? कहो तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह? उस व्यक्ति से बढ़कर जालिम कौन होगा जिसके जिम्मे अल्लाह की ओर से एक गवाही हो और वो उसे छुपाए? तुम्हारी करतूतों से अल्लाह बेखबर तो नहीं है? वे कुछ लोग थे जो जा चुके, उनकी कमाई उनके लिए थी और तुम्हारी कमाई तुम्हारे लिए। तुमसे उनके कर्मों के बारे में पूछा नहीं जाएगा।
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم
नादान लोग जरूर कहेंगे इन्हें क्या हुआ कि पहले ये जिस क़िबले की ओर रुख करके नमाज पढ़ते थे उससे अचानक फिर गए? ए नबी इनसे कहो पूरब और पश्चिम सब अल्लाह के हैं। अल्लाह जिसे चाहता है सीधा मार्ग दिखा देता है, और इसी तरह तो हमने तुम मुसलमानों को एक उत्तम समुदाय बनाया है ताकि तुम दुनिया के लोगों पर गवाह हो और रसूल तुम पर गवाह हो। पहले जिस ओर तुम रुख करते थे उसको तो हमने सिर्फ ये देखने के लिए क़िबला ठहराया था कि कौन रसूल का अनुसरण करता है और कौन उल्टा फिर जाता है। ये मामला था तो बड़ा भारी, मगर उन लोगों के लिए कुछ भी भारी सिद्ध न हुआ जिन्हें अल्लाह का मार्गदर्शन प्राप्त था। अल्लाह तुम्हारे इस ईमान को हरगिज अकारथ न करेगा। यकीन जानो कि वो लोगों के लिए अत्यंत करुणामय और दयावान है।
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون।
ऐ नबी, ये तुम्हारे मुंह का बार बार आसमान की ओर उठना हम देख रहे हैं। लो, हम उसी क़िबले की ओर तुम्हें फेर देते हैं जिसे तुम पसंद करते हो। प्रतिष्ठित मस्जिद यानी काबा की ओर रुख फेर दो। अब जहां कहीं तुम हो उसी की ओर मुंह करके नमाज पढ़ो। ये लोग जिन्हें किताब दी गई थी खूब जानते हैं कि क़िबला बदलने का ये आदेश उनके रब ही की ओर से है और सत्य पर आधारित है, मगर इसके बावजूद ये जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह उससे बेखबर नहीं है।
وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين।
تم إن كتاب والوں کے پاس चाहे कोई निशानी ले आओ, संभव नहीं कि ये तुम्हारे किबले का अनुसरण करने लगें, और ना तुम्हारे लिए ये संभव है कि इनके किबले का अनुसरण करो। और इनमें से कोई गिरोह भी दूसरे के किबले के अनुसरण के लिए तैयार नहीं है। और अगर तुमने उस ज्ञान के बाद जो तुम्हारे पास आ चुका है उनकी इच्छाओं का अनुसरण किया तो निश्चय ही तुम्हारी गिनती अत्याचारियों में होगी। जिन लोगों को हमने किताब दी है वे इस जगह को जिसे क़िबला बनाया गया है ऐसा पहचानते हैं जैसा अपनी संतान को पहचानते हैं, मगर उनमें से एक गिरोह जानते बूझते सत्य को छिपा रहा है। ये निश्चय ही एक सच्ची चीज है तुम्हारे रब की ओर से, अतः इसके प्रति तुम हरगिज किसी शक में ना पड़ो।
ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون।
हर एक के लिए एक रुख है जिसकी ओर वो मुड़ता है। अतः तुम भलाइयों की ओर बढ़ने में अग्रसरता दिखाओ। जहां भी तुम होगे अल्लाह तुम्हें पालेगा, उसकी कुदरत से कोई चीज बाहर नहीं। तुम जिस जगह से भी होकर जाओ वहीं से अपना रुख नमाज के समय प्रतिष्ठित मस्जिद काबा की ओर फेर दो, क्योंकि ये तुम्हारे रब का बिल्कुल सत्य पर आधारित फैसला है और अल्लाह तुम लोगों के कर्मों से बेखबर नहीं है। और जहां से भी होकर जाओ अपना रुख प्रतिष्ठित मस्जिद काबा ही की ओर फेरा करो, और जहां भी तुम हो उसी की ओर मुंह करके नमाज पढ़ो, ताकि लोगों को तुम्हारे खिलाफ झगड़ने की कोई दलील न मिले। हाँ, जो उनमें से जालिम हैं वे तो कभी चुप न होंगे, तो उनसे तुम न डरो बल्कि मुझसे डरो, और इसीलिए कि मेरी नेमत तुम पर पूरी हो, और इस आशा में कि मेरे इस आदेश के अनुपालन से तुम उसी तरह कामयाबी का मार्ग पाओगे जिस तरह तुम्हारा इस चीज से कल्याण हुआ कि हमने तुम्हारे बीच खुद तुम में से एक रसूल भेजा जो तुम्हें हमारी आयतें सुनाता है, तुम्हारे जीवन को संवारता है, तुम्हें किताब और तत्वदर्शिता की शिक्षा देता है और तुम्हें वे बातें सिखाता है जो तुम न जानते थे। अतः तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, और मेरा शुक्र अदा करो ना शुक्री ना करो।
या अय्युहा अल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तश्उरून ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة
ऐ लोगों, जो ईमान लाए हो सब्र और नमाज से मदद लो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, और जो लोग अल्लाह के मार्ग में मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, ऐसे लोग तो वास्तव में जिंदा हैं, लेकिन उनकी जिंदगी को तुम जान नहीं पाते, और हम जरूर तुम्हें डर भूख जानमाल की हानियों और आमदनियों के घाटे में डालकर तुम्हारी आजमाइश करेंगे। इन हालात में जो लोग सब्र से काम लें और जब कोई मुसीबत पड़े तो कहें कि हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की ओर हमें पलट कर जाना है, उन्हें खुशखबरी दे दो, उन पर उनके रब की ओर से बड़ी कृपाएं होंगी, उसकी दयालुता उन पर साया करेगी, और ऐसे ही लोग सीधे मार्ग पर चलने वाले हैं।
इन الصفा والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم
يقيناً सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। अतः जो व्यक्ति अल्लाह के घर का हज या उमरा यानी दर्शन करे उसके लिए इसमें कोई हर्ज नहीं कि वो इन दोनों पहाड़ियों के बीच तेजी से फेरा लगाए, और जो व्यक्ति स्वेच्छा से कोई भलाई का कार्य करेगा अल्लाह को उसका ज्ञान है और वो उसकी कद्र करने वाला है। जो लोग हमारी उतारी हुई खुली शिक्षाओं और आदेशों को छिपाते हैं हालांकि हम उन्हें सारे इंसानों के मार्गदर्शन के लिए अपनी किताब में बयान कर चुके हैं। यकीन जानो कि अल्लाह की भी उन पर फिटकार है और सभी फिटकारने वाले भी उन्हें फिटकारते हैं। अलबत्ता जो इस रवैये को छोड़ दें और अपने व्यवहार सुधार लें और जो कुछ छिपाते थे उसे बयान करने लगें, उनको मैं माफ कर दूंगा और मैं बड़ा माफ करने वाला और दयावान हूँ। जिन लोगों ने कुफ्र यानी न मानने की नीति अपनाई और कुफ्र ही की हालत में मरे, उन पर अल्लाह और फरिश्तों और सारे इंसानों की फिटकार है। इसी तिरस्कार की हालत में वे हमेशा रहेंगे, न उनकी सजा में कमी होगी और न उन्हें फिर कोई दूसरी मोहलत दी जाएगी। तुम्हारा इलाह यानी पूज्य प्रभु एक ही इलाह यानी पूज्य प्रभु है, उस करुणामय और दयावान के सिवा कोई और इलाह यानी पूज्य प्रभु नहीं है।
والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون।
इस सत्य को पहचानने के लिए अगर कोई निशानी और लक्षण अपेक्षित हैं, तो जो लोग अक्ल से काम लेते हैं उनके लिए आसमानों और जमीन की संरचना में, रात और दिन के निरंतर एक दूसरे के बाद आने में, उन नौकाओं में जो इंसान के लाभ की चीजें लिए हुए नदियों और समुद्रों में चलती फिरती हैं, बारिश के उस पानी में जिसे अल्लाह ऊपर से बरसाता है, फिर उसके द्वारा मुर्दा जमीन को जीवन प्रदान करता है और अपनी इसी व्यवस्था के कारण धरती में हर तरह के जीवधारियों को फैलाता है, हवाओं की गर्दिश में और उन बादलों में जो आसमान और जमीन के बीच आज्ञा के वशीभूत बनाकर रखे गए हैं, अनगिनत निशानियां हैं।
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب।
كنتو एक ईश्वरवाद को प्रमाणित करने वाले इन खुले खुले लक्षणों के होते हुए भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को उसका समकक्ष और प्रतिद्वंद्वी बनाते हैं और उनके प्रति ऐसे आसक्त हैं जैसी अल्लाह के साथ आसक्ति होनी चाहिए। हालांकि ईमान रखने वाले लोगों को सबसे बढ़कर अल्लाह प्रिय होता है। क्या ही अच्छा होता जो कुछ अजाब को सामने देखकर उन्हें सूचने वाला है वो आज ही इन जालिमों को सूझ जाए कि सारी शक्तियां और सारे अधिकार अल्लाह ही के हाथ में हैं, और ये कि अल्लाह सजा देने में भी बहुत सख्त है।
وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار।
جب وہ سزا دے گا اس سمے हालत ये होगी कि वही पेशवा और नेता जिनका संसार में अनुपालन किया गया था अपने अनुयायियों से विरक्त हो जाएंगे, लेकिन सजा पाकर रहेंगे और उनके सारे उपक्रमों और साधनों का सिलसिला कट जाएगा। और वे लोग जो संसार में उनके पीछे चलते थे कहेंगे कि क्या अच्छा होता हमको फिर एक अवसर दिया जाता, तो जिस तरह आज ये हमसे विरक्त हो रहे हैं हम भी इनसे विरक्त होकर दिखा देते। इस तरह अल्लाह इन लोगों के वे कर्म जो ये दुनिया में कर रहे हैं इनके सामने इस तरह लाएगा कि ये पश्चातापों और ग्लानियों के साथ हाथ मलते रहेंगे मगर आग से निकलने का कोई मार्ग न पाएंगे।
ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون।
लोगो, धरती में जो हलाल यानी वैध और अच्छी सुथरी चीजें हैं उन्हें खाओ और शैतान के बताए हुए रास्तों पर न चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तुम्हें बुराई और अश्लील बात को कहता है और ये सिखाता है कि तुम अल्लाह के नाम पर वे बातें कहो जिनके संबंध में तुम नहीं जानते हो कि वे अल्लाह की कही हुई हैं। उनसे जब कहा जाता है कि अल्लाह ने जो आदेश उतारे हैं उन पर चलो, तो उसके उत्तर में कहते हैं कि हम तो उसी रास्ते पर चलेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। अच्छा, अगर इनके बाप दादा ने बुद्धि से कुछ भी काम न लिया हो और सीधा मार्ग न पाया हो तो क्या फिर भी ये उन्हीं का अनुसरण किए चले जाएंगे? ये लोग जिन्होंने अल्लाह के बताए हुए तरीके पर चलने से इनकार कर दिया है इनकी दशा बिल्कुल ऐसी है जैसे चरवाहा पशुओं को पुकारता है और वे हांक पुकार की आवाज के सिवा कुछ नहीं सुनते। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, इसलिए कोई बात इनकी समझ में नहीं आती। ऐ लोगो, जो ईमान लाए हो, अगर तुम वास्तव में अल्लाह ही की बंदगी करने वाले हो तो जो स्वच्छ अच्छी चीजें हमने तुम्हें प्रदान की हैं उन्हें बेझिझक खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह की ओर से अगर कोई पाबंदी तुम पर है तो वो ये है कि मुर्दार न खाओ, खून से और सुअर के मांस से बचो और कोई ऐसी चीज न खाओ जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो। हाँ, जो व्यक्ति मजबूरी की हालत में हो और वो इनमें से कोई चीज खा ले बिना इसके कि वो नियमोल्लंघन करना चाहता हो या आवश्यकता की सीमा से आगे बढ़े तो उस पर कुछ गुनाह नहीं, अल्लाह क्षमाशील और दयावान है।
ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد.
سچ یہ ہے کہ جو لوگ ان آدیشوں کو چھپاتے ہیں जो अल्लाह ने अपनी किताब में अवतरित किए हैं और थोड़े से सांसारिक लाभों पर उन्हें भेंट चढ़ाते हैं वे वास्तव में अपने पेट आग से भर रहे हैं। कयामत के दिन अल्लाह हरगिज उनसे बात न करेगा न उन्हें पाकीजा ठहराएगा और उनके लिए दर्दनाक सजा है। ये वे लोग हैं जिन्होंने मार्गदर्शन के बदले पथभ्रष्टता मोल ली और मग़फ़िरत के बदले अज़ाब मोल ले लिया। कैसा अजीब है इनका हौसला कि जहन्नम का अज़ाब सहन करने के लिए तैयार हैं। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि अल्लाह ने तो ठीक ठीक सत्य के अनुसार किताब उतारी थी मगर जिन लोगों ने किताब में विभेद पैदा किए वे अपने झगड़ों में सत्य से बहुत दूर निकल गए।
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے پورب کی اور کر لیے یا پچھم کی اور बल्कि नेकी यह है कि आदमी अल्लाह को और अंतिम दिन को और फरिश्तों को और अल्लाह की उतारी हुई किताब और उसके पैगंबरों को दिल से माने और अल्लाह के प्रेम में अपना दिल पसंद माल नातेदारों और अनाथों पर निर्धनों और मुसाफिरों पर मदद के लिए हाथ फैलाने वालों पर और गुलामों की रिहाई पर खर्च करे नमाज कायम करे और ज़कात दे और नेक वे लोग हैं कि जब वचन दें तो उसे पूरा करें और तंगी और विपत्ति के समय में और सत्य और असत्य के युद्ध में धैर्य दिखाएं। ये हैं सच्चे लोग और यही लोग परहेजगार हैं।
या अय्युहा الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.
اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا آدیش لکھ دیا گیا ہے آزاد آدمی نے قتل کیا تو اس آزاد آدمی سے ہی بدلہ لیا جائے غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے اور عورت نے یہ اپرادھ کیا ہو تو اس عورت سے ہی قصاص لیا جائے ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی
कुछ नरमी करने के लिए तैयार हो तो सामान्य नियम के अनुसार खून के माली बदले का निपटारा होना चाहिए और कातिल के लिए आवश्यक है कि भले तरीके से खून बहा चुका दे। ये तुम्हारे रब की ओर से छूट और दयालुता है। इस पर भी जो ज्यादती करे उसके लिए दर्दनाक सजा है। अक्ल और समझ वालों, तुम्हारे लिए किसास में जिंदगी है। उम्मीद है कि तुम इस कानून के उल्लंघन से बचोगे।
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم।
तुम्हारे लिए अनिवार्य किया गया है कि जब तुम में से किसी की मौत का समय आए और वो अपने पीछे माल छोड़ रहा हो तो माँ बाप और नातेदारों के लिए सामान्य नियम के अनुसार वसीयत करे। ये हक है अल्लाह का डर रखने वालों पर। फिर जिन्होंने वसीयत सुनी और बाद में उसे बदल डाला तो उसका गुनाह उन बदलने वालों पर होगा। अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। अलबत्ता जिसको ये अंदेशा हो कि वसीयत करने वाले ने अनजाने में या जानबूझकर हक मारा है और फिर मामले से संबंध रखने वालों के बीच वो सुधार करे तो उस पर कुछ गुनाह नहीं है। अल्लाह माफ करने वाला और दया करने वाला है।
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون।
أي لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے لیے روزے انیواریہ کر دیے گئے जिस तरह तुमसे पहले नबियों के अनुयायियों के लिए अनिवार्य किए गए थे। इससे उम्मीद है कि तुम में परहेजगारी का गुण पैदा होगा। कुछ निश्चित दिनों के रोजे हैं। अगर तुम में से कोई बीमार हो या सफर पर हो तो दूसरे दिनों में इतनी ही गिनती पूरी कर ले। और जिन लोगों को रोजे रखने की सामर्थ्य प्राप्त हो फिर न रखें तो वे फितिया दें। एक रोजे का प्रतिदान एक मोहताज को खाना खिलाना है और जो अपनी खुशी से कुछ ज्यादा भलाई करे तो ये उसी के लिए अच्छा है। लेकिन अगर तुम समझो तो तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि रोजा रखो।
शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फीही अल-कुरआन हुदा लिन-नास व बैनातिन मिनल हुदा वल-फुरकान فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون।
रमजान वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया जो इंसानों के लिए सर्वथा मार्गदर्शन है और ऐसी स्पष्ट शिक्षाओं पर आधारित है जो सीधा मार्ग दिखाने वाली और सत्य और असत्य का अंतर खोल कर रख देने वाली है। अतः अब से जो व्यक्ति इस महीने को पाए उसके लिए अनिवार्य है कि इस पूरे महीने के रोजे रखे, और जो कोई बीमार हो या सफर पर हो तो वो दूसरे दिनों में रोजों की गिनती पूरी करे। अल्लाह तुम्हारे साथ नरमी करना चाहता है, सख्ती करना नहीं चाहता। इसलिए ये तरीका तुम्हें बताया जा रहा है ताकि तुम रोजों की गिनती पूरी कर सको और जिस सीधे मार्ग पर अल्लाह ने तुम्हें लगाया है उस पर अल्लाह की बड़ाई का इजहार करो और मानो और शुक्रगुजार बनो। और ए नबी, मेरे बंदे अगर तुमसे मेरे संबंध में पूछें तो उन्हें बता दो कि मैं उनसे करीब ही हूँ। पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार सुनता और जवाब देता हूँ। अतः उन्हें चाहिए कि मेरी पुकार पर कहें कि हम हाजिर हैं और मुझ पर ईमान लाएं। ये बात तुम उन्हें सुना दो, शायद कि वे सीधा मार्ग पालें।
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون।
تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی پتنیوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے, वे तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। अल्लाह को मालूम हो गया कि तुम लोग चुपके चुपके अपने आप से खयानत यानी चोरी कर रहे थे, मगर उसने तुम्हारा कसूर माफ कर दिया और तुम्हें छोड़ दिया। अब तुम अपनी पत्नियों के साथ रात काटो और जो आनंद अल्लाह ने तुम्हारे लिए जायज कर दिया है उसे हासिल करो और रातों को खाओ पियो, यहाँ तक कि रात की कालिमा की धारी से प्रातः वेला की सफेद धारी स्पष्ट दिखाई दे जाए। तब ये सब काम छोड़कर रात तक अपना रोजा पूरा करो, और जब तुम मस्जिदों में एतिकाफ में हो तो पत्नियों से संभोग न करो। ये अल्लाह की निर्धारित की हुई सीमाएं हैं, इनके निकट न फटकना। इस तरह अल्लाह अपने आदेश लोगों के लिए स्पष्ट रूप से बयान करता है, उम्मीद है कि वे गलत रवैये से बचेंगे।
वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल वतुदलू बिहा इला अलहुकाम लिताकुलू फरीका وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون।
और तुम लोग ना तो आपस में एक दूसरे के माल अवैध रूप से खाओ और ना अधिकारी व्यक्तियों के आगे उनको इस गरज से पेश करो कि तुम्हें दूसरों के माल का कोई हिस्सा जानबूझकर अन्यायपूर्ण तरीके से खाने का अवसर मिल जाए।
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
اے نبی، لوگ تم سے چاند کے گھٹتے بڑھتے روپوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کے لیے تتھیوں کے نردھارن کے اور حج کے لکشن ہیں، ان سے یہ بھی کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی اور سے پرویش کرتے ہو، نیکی تو واسطو میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی اپرسنتا سے بچے، اتہ تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تمہیں سفلتا پراپت ہو جائے۔
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
اور تم اللہ کے مارگ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، لیکن زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ان سے لڑو جہاں بھی تمہاری ان سے مٹھ بھیڑ ہو جائے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اس لیے کہ قتل یدیپی برا ہے مگر اپدرو اس سے بھی ادھک برا ہے، اور پرتشٹھت مسجد یعنی کعبہ کے نکٹ جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکیں تو تم بھی نسنکوچ انہیں مارو، کہ ایسے ادھرمیوں کی یہی سزا ہے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو اللہ کھما کرنے والا اور دیاوان ہے، تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ اپدرو باقی نہ رہے اور دھرم اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ اتیاچاریوں کے علاوہ اور کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا۔
الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة
प्रतिष्ठित यानी हराम महीने का बदला प्रतिष्ठित महीना ही है और समस्त प्रतिष्ठाओं का लिहाज बराबरी के साथ होगा, अतः जो तुम पर हाथ उठाए तुम भी उसी तरह उस पर हाथ उठाओ, अलबत्ता अल्लाह से डरते रहो और ये जान रखो کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی سیماؤں کو توڑنے سے بچتے ہیں، اللہ کے مارگ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو تباہی میں نہ ڈالو، اچھے سے اچھا طریقہ اپناؤ کہ اللہ اچھے سے اچھا طریقہ اپنانے والوں کو پسند کرتا ہے۔
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرہ کا نشچے کرو تو اسے پورا کرو, اور اگر کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی اپلبدھ ہو اللہ کی سیوا میں بھینٹ کرو, اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنے ستھان پر نہ پہنچ جائے. مگر جو ویکتی بیمار ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس کارن اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ پرتیدان یعنی صدقہ کے روپ میں روزے رکھے یا دان کرے یا قربانی کرے. پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو ویکتی تم میں سے حج کا سمے آنے تک عمرہ سے فائدہ اٹھائے وہ سامرتھ کے انوسار قربانی دے, اور اگر قربانی اپلبدھ نہ ہو تو 3 روزے حج کے سمے میں اور 7 گھر پہنچ کر اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے. یہ چھوٹ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار پرتشٹھت مسجد یعنی کعبہ کے نکٹ نہ ہوں. اللہ کے ان آدیشوں کے الگھن سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے.
الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمه اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں. जो व्यक्ति उन निश्चित महीनों में हज का इरादा करे उसे सावधान रहना चाहिए कि हज के बीच में उससे कोई काम वासना का कार्य, कोई बुरा काम, कोई लड़ाई झगड़े की बात न होने पाए. और जो अच्छे कर्म तुम करोगे उसे अल्लाह जानता होगा. हज के सफर के लिए पाथे यानी ज्यादा राह साथ ले जाओ, और सबसे अच्छा पाथे परहेजगारी है. अतः ए अक्ल वालो, मेरी नाफरमानी से बचो, और यदि हज के साथ साथ तुम अपने रब का अनुग्रह भी खोजते जाओ तो इसमें कोई दोष नहीं. फिर जब अरफात से चलो तो मशअरे हराम यानी मुजदलफा के पास ठहर कर अल्लाह को याद करो, और उसी तरह याद करो जिसकी सीख उसने तुम्हें दी है, वरना इससे पहले तो तुम लोग भटके हुए थे. फिर जहां से और सब लोग पलटते हैं वहीं से तुम भी पलटो और अल्लाह से माफी चाहो, निश्चय ही वो क्षमाशील और दयावान है.
فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
پھر جب حج سمبندھی ارکان کو پورا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے پوروجوں کی چرچا کرتے تھے اسی طرح اب اللہ کا ذکر کرو, بلکہ اس سے بھی پڑھ کر. मगर अल्लाह को याद करने वालों में भी बहुत अंतर है. उनमें से कोई तो ऐसा है जो कहता है कि ए हमारे रब, हमें दुनिया ही में सब कुछ दे दे. ऐसे व्यक्ति के लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, और कोई कहता है कि ए हमारे रब हमें दुनिया में भलाई दे और आखिरत में भी भलाई और आग के अजाब से हमें बचा।
أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون।
ऐसे लोग अपनी कमाई के अनुसार दोनों जगह हिस्सा पाएंगे और अल्लाह को हिसाब चुकाते कुछ देर नहीं लगती। ये गिनती के कुछ दिन हैं जो तुम्हें अल्लाह की याद में बसर करने चाहिए। फिर जो कोई जल्दी करके दो ही दिन में लौट पड़ा तो कोई हर्ज नहीं, और जो कुछ देर ज्यादा ठहर कर पलटा तो भी कोई हर्ज नहीं। शर्त ये है कि ये दिन उसने परहेजगारी के साथ बसर किए हों। अल्लाह की नाफरमानी से बचो और खूब जान रखो कि एक दिन उसके सामने तुम्हारी पेशी होने वाली है।
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ।
इंसानों में कोई तो ऐसा है जिसकी बातें दुनिया की जिंदगी में तुम्हें बहुत भली लगती हैं, और अपनी नेक नियति पर वो बार बार अल्लाह को गवाह ठहराता है, मगर वास्तव में वो सत्य का बदतरीन दुश्मन होता है। जब उसे सत्ता मिल जाती है तो धरती में उसकी सारी दौड़ धूप इसलिए होती है कि बिगाड़ फैलाए, खेतों को नष्ट करे और इंसानी नस्ल को तबाह करे। हालांकि अल्लाह जिसे वो गवाह बना रहा था बिगाड़ को हरगिज पसंद नहीं करता, और जब उससे कहा जाता है कि अल्लाह से डर तो अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान उसको गुनाह पर जमा देता है। ऐसे व्यक्ति के लिए तो बस जहन्नम ही काफी है और वो बहुत बुरा ठिकाना है।
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة
दूसरी ओर इंसानों ही में कोई ऐसा भी है जो अल्लाह की प्रसन्नता की चाह में अपनी जान खपा देता है, और ऐसे बंदों के प्रति अल्लाह बहुत मेहरबान है। ए ईमान लाने वालों, तुम पूरे के पूरे इस्लाम यानी आज्ञा पालन में आ जाओ और शैतान का अनुपालन ना करो कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। जो साफ साफ आदेश तुम्हारे पास आ चुके हैं अगर उनको पा लेने के बाद फिर तुम बहके तो खूब जान रखो कि अल्लाह का प्रभुत्व सर्वत्र है और वो तत्वदर्शी और ज्ञाता है। इन सारे उपदेशों और आदेशों के बाद भी लोग सीधे न हों तो क्या अब वे इसका इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह बादलों का छत्र लगाए, फरिश्तों का परा साथ लिए खुद सामने आ मौजूद हो और फैसला ही कर डाला जाए। आखिरकार सारे मामले पेश तो अल्लाह ही के सामने होने वाले हैं।
सल बनी इसराइल कम आतैनाहुम मिन आयतिन बैना وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ।
इसराइल की संतान से पूछो, कैसी खुली खुली निशानियां हमने उन्हें दिखाई हैं, और फिर ये भी उन्हीं से पूछ लो कि अल्लाह की नेमत पाने के बाद जो कौम उसको दुर्भाग्य से बदलती है उसे अल्लाह कैसी सख्त सजा देता है। जिन लोगों ने इनकार का रास्ता अपनाया है उनके लिए सांसारिक जीवन बड़ा प्रिय और दिल पसंद बना दिया गया है। ऐसे लोग ईमान वालों की हंसी उड़ाते हैं, मगर कयामत के दिन परहेजगार लोग ही उनके मुकाबले में उच्च स्थान पर होंगे। रही दुनिया की रोजी तो अल्लाह को अधिकार है, जिसे चाहे बेहिसाब प्रदान करे।
وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ।
शुरू में सब लोग एक ही तरीके पर थे, फिर ये हालत बाकी न रही और विभेद प्रकट हुए। तब अल्लाह ने नबी भेजे जो सीधे मार्ग पर चलने पर खुशखबरी देने वाले और टेढ़ी चाल के परिणामों से डराने वाले थे, और उनके साथ सत्य पर आधारित पुस्तक उतारी ताकि सत्य के विषय में लोगों के बीच जो विभेद उत्पन्न हो गए थे उनका फैसला करे। और इन विभेदों के प्रकट होने का कारण ये न था कि शुरू में लोगों को सत्य का ज्ञान कराया ही नहीं गया था, नहीं, विभेद उन लोगों ने किया जिन्हें सत्य का ज्ञान दिया जा चुका था। उन्होंने स्पष्ट आदेश पा लेने के बाद केवल इसलिए सत्य को छोड़कर विभिन्न रास्ते निकाले कि वे परस्पर ज्यादती करना चाहते थे। अतः जिन लोगों ने पैगंबरों को माना उन्हें अल्लाह ने अपनी अनुमति से उस सत्य का रास्ता दिखा दिया जिसमें लोगों ने विभेद किया था। अल्लाह जिसे चाहता है सीधा मार्ग दिखा देता है।
أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم।
फिर क्या तुम लोगों ने ये समझ रखा है कि यूं ही जन्नत में दाखिला तुम्हें मिल जाएगा, हालांकि अभी तुम पर वो सब कुछ नहीं बीता है जो तुमसे पहले ईमान वालों पर बीत चुका है। उन लोगों पर कठिनाइयां आईं, मुसीबतें आईं, हेला मारे गए, यहां तक कि समय का रसूल और उसके साथ ही ईमान वाले चिल्ला उठे कि अल्लाह की सहायता कब आएगी। उस समय उन्हें तसल्ली दी गई कि हाँ अल्लाह की मदद करीब है। लोग तुमसे पूछते हैं हम क्या खर्च करें, जवाब दो कि जो माल भी तुम खर्च करो अपने माँ बाप पर, नातेदारों पर, यतीमों और निर्धनों और मुसाफिरों पर खर्च करो, और जो भलाई भी तुम करोगे अल्लाह उसे जानता होगा।
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون।
तुम्हें लड़ाई का आदेश दिया गया है और वो तुम्हें नापसंद है। हो सकता है कि एक चीज तुम्हें नापसंद हो और वही तुम्हारे लिए अच्छी हो, और हो सकता है कि एक चीज तुम्हें पसंद हो और वही तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते।
यसअलूनका अनिल शहरिल हराम क़िताला फीह قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون।
लोग पूछते हैं प्रतिष्ठित महीने में लड़ना कैसा है? कहो इसमें लड़ना बहुत बुरा है, मगर अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकना और अल्लाह से कुफ्र करना और मस्जिद हराम यानी काबा का रास्ता अल्लाह को मानने वालों पर बंद करना और हरम के रहने वालों को वहां से निकालना अल्लाह के नजदीक इससे भी ज्यादा बुरा है, और फितना यानी धर्म से बिचलाना रक्तपात से भी भारी बात है। वे तो तुमसे लड़े ही जाएंगे, यहाँ तक कि अगर उनका बस चले तो तुम्हारे दीन से तुमको फेर ले जाएं। तो ये अच्छी तरह समझ लो कि तुम में से जो कोई अपने दीन से फिरेगा और इनकार की हालत में मरेगा उसके कर्म दुनिया और आखिरत दोनों में अकारत जाएंगे। ऐसे सब लोग जहन्नमी हैं और हमेशा जहन्नम ही में रहेंगे।
إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم।
इसके विपरीत जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने अल्लाह की राह में अपना घर बार छोड़ा और जिहाद किया है, वे ईश्वरीय दयालुता के उचित अधिकारी हैं, और अल्लाह उनकी भूल चूक को माफ करने वाला और अपनी रहमत से उन्हें नवाजने वाला है।
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم।
पूछते हैं शराब और जुए के बारे में क्या हुक्म है? कहो इन दोनों चीजों में बड़ी खराबी है, यद्यपि इनमें लोगों के लिए कुछ लाभ भी हैं, मगर इनका गुनाह उनके फायदे से बहुत ज्यादा है। पूछते हैं हम अल्लाह के रास्ते में क्या खर्च करें? कहो जो कुछ तुम्हारी जरूरत से ज्यादा हो। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए साफ साफ आदेश बयान करता है, शायद कि तुम दुनिया और आखिरत दोनों की चिंता करो। पूछते हैं यतीमों यानी अनाथों के साथ क्या मामला किया जाए? कहो जिस व्यवहार नीति में उनके लिए भलाई हो वही ग्रहण करना सबसे अच्छा है। अगर तुम अपना और उनका खर्च और रहना सहना एक साथ रखो तो इसमें कोई हर्ज नहीं। आखिर वे तुम्हारे भाई बंधु ही तो हैं, बुराई करने वाले और भलाई करने वाले दोनों का हाल अल्लाह पर जाहिर है। अल्लाह चाहता तो इस मामले में तुम पर सख्ती करता, मगर वो प्रभुत्वशाली होने के साथ तत्वदर्शी भी है।
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون।
तुम मुशरिक यानी बहुदेव वादी औरतों से हरगिज निकाह न करना जब तक कि वे ईमान न ले आएं। एक मोमिन दासी मुशरिक शरीफ औरत से बेहतर है, यद्यपि वो तुम्हें बहुत पसंद हो। और अपनी औरतों के निकाह मुशरिक मर्दों से कभी न करना जब तक वे ईमान न ले आएं। एक मोमिन गुलाम मुशरिक शरीफ आदमी से बेहतर है, यद्यपि वो तुम्हें बहुत पसंद हो। ये लोग तुम्हें आग की ओर बुलाते हैं और अल्लाह अपनी अनुमति से तुमको जन्नत और मगफिरत की ओर बुलाता है, और वो अपने आदेश स्पष्ट रूप से लोगों के सामने बयान करता है। आशा है कि वे शिक्षा लेंगे और जो समझाया जा रहा है उसे स्वीकार करेंगे।
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ المؤمنين।
पूछते हैं हैज यानी मासिक धर्म के बारे में क्या हुक्म है। कहो वो एक गंदगी की हालत है, उसमें स्त्रियों से अलग रहो और उनके पास न जाओ जब तक कि वे पाक साफ न हो जाएं। फिर जब वे पाक हो जाएं तो उनके पास जाओ उस तरह जैसा कि अल्लाह ने तुम्हें आदेश दिया है। अल्लाह को वे लोग पसंद हैं जो बुराई से बाज रहें और पाकी अपनाएं। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, तुम्हें अधिकार है जिस तरह चाहो अपनी खेती में जाओ, मगर अपने भविष्य की चिंता करो और अल्लाह की अप्रसन्नता से बचो। खूब जान लो कि तुम्हें एक दिन उससे मिलना है, और ऐ नबी जो तुम्हारे आदेशों को मान लें उन्हें सफलता और सौभाग्य की خبري سنادو
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم।
अल्लाह के नाम को ऐसे शपथ ग्रहण के लिए प्रयोग न करो जिनका मकसद नेकी और धर्म परायणता और लोगों की भलाई के कामों से रुक जाना हो। अल्लाह तुम्हारी सारी बातें सुन रहा है और सब कुछ जानता है। जो निरर्थक कस्में तुम बिना इरादे के खा लिया करते हो उन पर अल्लाह नहीं पकड़ता, मगर जो कस्में तुम सच्चे दिल से खाते हो उनके बारे में वो जरूर पूछेगा। अल्लाह बहुत क्षमा करने वाला और सहनशील है। जो लोग अपनी औरतों से संबंध न रखने की कसम खा बैठते हैं उनके लिए 4 महीने की मोहलत है। अगर वे पलट आएं,
तो अल्लाह क्षमा करने वाला और दयावान है, और अगर उन्होंने तलाक ही की ठान ली हो तो जाने रहें कि अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है।
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم।
जिन औरतों को तलाक दी गई हो वे तीन बार मासिक धर्म होने तक अपने आप को रोके रखें, और उनके लिए ये जायज नहीं कि अल्लाह ने उनके गर्भाशय में जो सृजन किया हो उसे छिपाएं। उन्हें हरगिज ऐसा न करना चाहिए। अगर वे अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखती हैं, उनके पति संबंधों को ठीक करने के लिए तैयार हों, तो वे इस इद्दत की अवधि में उन्हें फिर पत्नी के रूप में वापस ले लेने के अधिकारी हैं। औरतों के लिए भी सामान्य नियम के अनुसार वैसे ही अधिकार हैं जैसे मर्दों के अधिकार उन पर हैं। अलबत्ता मर्दों को उन पर एक दर्जा प्राप्त है, और सब पर अल्लाह प्रभावकारी प्रभुत्व रखने वाला और तत्वदर्शी और ज्ञाता मौजूद है।
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون।
طلاق دو بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو بدا کر دیا جائے، और विदा करते हुए ऐसा करना तुम्हारे लिए जायज नहीं है कि जो कुछ तुम उन्हें दे चुके हो उसमें से कुछ वापस ले लो। अलबत्ता ये अपवाद है कि पति पत्नी को अल्लाह की निर्धारित सीमाओं पर कायम न रह सकने की आशंका हो। ऐसी दशा में अगर तुम्हें ये भय हो कि वे दोनों अल्लाह की सीमाओं पर कायम न रहेंगे, तो उन दोनों के बीच ये मामला हो जाने में कोई हर्ज नहीं कि पत्नी अपने पति को कुछ मुआवजा देकर जुदाई हासिल कर ले। ये अल्लाह की निर्धारित की हुई सीमाएं हैं, इनका उल्लंघन न करो, और जो लोग अल्लाह की सीमाओं का उल्लंघन करें वही जालिम हैं।
فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون।
फिर अगर दो बार तलाक देने के बाद पति ने पत्नी को तीसरी बार तलाक दे दी तो वो औरत फिर उसके लिए हलाल न होगी सिवाय इसके कि उसका निकाह किसी दूसरे व्यक्ति से हो और वो उसे तलाक दे दे। तब अगर पहला पति और ये औरत दोनों ये समझें कि अल्लाह की निर्धारित की हुई सीमाओं पर कायम रहेंगे, तो उनके लिए एक दूसरे की ओर पलटने में कोई हर्ज नहीं। ये अल्लाह की निर्धारित की हुई सीमाएं हैं जिन्हें वो उन लोगों के मार्गदर्शन के लिए स्पष्ट कर रहा है जो उसकी सीमाओं को तोड़ने का परिणाम जानते हैं।
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.
اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت अर्थात निश्चित अवधि पूरी होने को आ जाए तो या भले तरीके से उन्हें रोक लो या भले तरीके से विदा कर दो, सिर्फ सताने के लिए उन्हें न रोके रखना कि ये ज्यादती होगी और जो ऐसा करेगा वो वास्तव में आप अपने ही ऊपर जुल्म करेगा। अल्लाह की आयतों का खेल ना बनाओ, भूल ना जाओ कि अल्लाह ने किस बड़ी नेमत से तुम्हें नवाजा है। वो तुम्हें नसीहत करता है कि जो किताब और तत्वदर्शिता यानी हिकमत उसने तुम पर नाजिल की है उसके आदर का ध्यान रखो। अल्लाह से डरो और अच्छी तरह जान लो कि अल्लाह को हर बात की खबर है।
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو और वे अपनी अवधि यानी इद्दत पूरी कर लें, तो फिर इसमें रुकावट न खड़ी करो कि वे अपने मनपसंद पतियों से निकाह कर लें, जबकि वे सामान्य रीति से आपस में निकाह करने पर राजी हों। तुम्हें नसीहत की जाती है कि ऐसी हरकत हरगिज न करना। अगर तुम अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान लाने वाले हो, तुम्हारे लिए शिष्ट और सुथरा तरीका यही है कि इससे बाज रहो। الله جانتا ہے تم نہیں جانتے.
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.
جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کے بچے دودھ پینے کی پوری اودھی تک دودھ پئیں تو مائیں اپنے بچوں کو پورے دو ورشوں تک دودھ پلائیں، ایسی استھتی میں بچے کے باپ کو सामान्य रीति से उन्हें खाना कपड़ा देना होगा, मगर किसी पर उसकी समाई से बढ़कर बोझ न डालना चाहिए। न तो माँ को इस कारण से तकलीफ में डाला जाए कि बच्चा उसका है, और न बाप ही को इस कारण से तंग किया जाए कि बच्चा उसका है। दूध पिलाने वाली का ये अधिकार जैसा बच्चे के बाप पर है वैसा ही उसके वारिस पर भी है, लेकिन अगर दोनों पक्ष वाले आपस के समझौते और मशविरे से दूध छुड़ाना चाहें तो ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं। और यदि तुम्हारा विचार अपने बच्चों को किसी दूसरी औरत से दूध पिलवाने का हो तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं। शर्त यह है कि इसका जो कुछ मुआवजा तय करो वो सामान्य रीति से चुका दो। अल्लाह से डरो और जान रखो कि जो कुछ तुम करते हो सब अल्लाह की नजर में है।
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير.
تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی پتنیاں زندہ ہوں तो वे अपने आप को 4 महीने 10 दिन रोके रखें। फिर जब उनकी अवधि यानी इद्दत पूरी हो जाए तो उन्हें अधिकार है अपने विषय में सामान्य रीति से जो चाहें करें, तुम पर इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, अल्लाह तुम सबके आमाल की खबर रखता है।
وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ
نِشْتْ أَوْدِكَال يعني عدت کی مدت میں چاہے تم ان ودھوا عورتوں کے ساتھ نکاح کا وچار संकेत रूप में जाहिर कर दो, चाहे मन में छिपाए रखो, दोनों हालतों में कोई हर्ज नहीं। अल्लाह जानता है कि उनका ख्याल तो तुम्हारे दिल में आएगा ही, मगर देखो गुप्त रूप से समझौता न करना। अगर कोई बात करनी है तो सामान्य रीति से करो और निकाह का नाता जोड़ने का फैसला उस समय तक न करो जब तक कि अवधि यानी इद्दत पूरी ना हो जाए। खूब समझ लो कि अल्लाह तुम्हारे दिलों का हाल तक जानता है, इसलिए उससे डरो और ये भी जान लो कि अल्लाह सहनशील है, छोटी छोटी बातों को माफ कर देता है।
ला जुनाहा अलैकुम इन तल्लकतुम निसा मा लम तमस्सूहुन औ तफरिदू लहुन फरीदा ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير
تم پر کچھ گناہ نہیں अगर अपनी औरतों को तलाक दे दो इससे पहले कि हाथ लगाने की नौबत आए और महर मुकर्रर हो। इस स्थिति में उन्हें कुछ न कुछ देना जरूर चाहिए। खुशहाल आदमी अपनी सामर्थ्य के अनुसार और गरीब अपनी सामर्थ्य के अनुसार सामान्य रीति से दे, ये हक है नेक आदमियों पर। और अगर तुमने हाथ लगाने से पहले तलाक दी हो लेकिन महर मुकर्रर किया जा चुका हो तो इस हालत में महर का आधा देना होगा। ये और बात है कि औरत नरमी बरते और महर ना ले, या वो मर्द जिसके हाथ में विवाह के नाते का अधिकार है नरमी से काम ले और पूरा महर दे दे, और तुम अर्थात मर्द नरमी से काम लो तो ये धर्म परायणता यानी तकवा के अधिक अनुकूल है। आपस के मामलों में उदारता एवं दानशीलता को न भूलो, तुम्हारे कर्मों को अल्लाह देख रहा है।
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون
अपनी नमाजों की निगरानी करो, विशेष रूप से ऐसी नमाज की जो अपने में उपासना गुणों को समाहित किए हुए हो। अल्लाह के आगे इस तरह खड़े हो जैसे आज्ञाकारी गुलाम खड़े होते हैं। अशांति की स्थिति हो तो चाहे पैदल हो चाहे सवार, जिस तरह संभव हो नमाज पढ़ो, और जब शांति प्राप्त हो तो अल्लाह को उस तरीके से याद करो जो उसने तुम्हें सिखा दिया है जिससे तुम पहले बेखबर थे।
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون
تم میں سے جن لوگوں کی موت ہو اور وہ اپنے پیچھے پتنیاں چھوڑ رہے ہوں ان کو چاہیے کہ اپنی پتنیوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ ایک ورش تک ان کو کھانا کپڑا دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنے معاملے میں سامانیہ ریتی سے وہ جو کچھ بھی کریں اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے اللہ کو سب پر پربھاوکاری پربھتو پراپت ہے اور وہ تتو درشی اور جاننے والا ہے اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی اچت روپ سے کچھ نہ کچھ دے کر ودا کیا جائے یہ حق ہے پرہیزگار لوگوں پر اس طرح اللہ اپنے آدیش تمہیں صاف صاف بتاتا ہے امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ کر کام کرو گے
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون
تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ وچار کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ پھر اس نے ان کو دوبارہ جیون پردان کیا حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑی دیا کرنے والا ہے مگر ادھکتر لوگ شکر ادا نہیں کرتے مسلمانوں اللہ کے مارگ میں یدھ کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے تم میں کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر لوٹائے گھٹانا بھی اللہ کے ادھیکار میں ہے اور بڑھانا بھی اور اسی کی اور تمہیں پلٹ کر جانا ہے
أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين
پھر تم نے اس معاملے پر بھی وچار کیا جو موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو پیش آیا تھا انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کے مارگ میں یدھ کریں نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے مارگ میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بال بچے ہم سے الگ کر دیے گئے ہیں مگر جب ان کو یدھ کا حکم دیا گیا تو ایک چھوٹی تعداد کے سوا سب پیٹھ پھیر گئے اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے
وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم
उनके नबी ने उनसे कहा कि अल्लाह ने तालूत को तुम्हारे लिए बादशाह मुकर्रर किया है। ये सुनकर वे बोले, हम पर बादशाह बनने का वो कैसे हकदार हो गया? उसके मुकाबले में बादशाही के हम ज्यादा हकदार हैं। ये तो कोई बड़ा मालदार आदमी भी नहीं है। नबी ने जवाब दिया, अल्लाह ने तुम्हारे मुकाबले में उसी को चुना है और उसको दिमागी और जिस्मानी दोनों प्रकार की योग्यताएं भरपूर प्रदान की हैं और अल्लाह को अधिकार है कि अपना राज्य जिसे चाहे दे। अल्लाह बड़ी समाई वाला है और वो सब कुछ जानता है।
وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين
इसके साथ उनके नबी ने उनको ये भी बताया कि अल्लाह की ओर से उसके बादशाह मुकर्रर होने का लक्षण ये है कि उसके समय में वो संदूक तुम्हें वापस मिल जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की ओर से तुम्हारे लिए दिल के इत्मीनान का सामान है, जिसमें मूसा के लोगों और हारून के लोगों की छोड़ी हुई बरकत वाली वस्तुएं हैं और जिसको इस समय फरिश्ते संभाले हुए हैं। अगर तुम ईमान वाले हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी निशानी है।
فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين
फिर जब तालूत सेना लेकर चला तो उसने कहा, एक दरिया पर अल्लाह की ओर से तुम्हारी परीक्षा होने वाली है, जो उसका पानी पिएगा वो मेरा साथी नहीं, मेरा साथी सिर्फ वो है जो उससे प्यास न बुझाए। हाँ, एक आध चुल्लू कोई पी ले तो पी ले, मगर एक छोटे गिरोह के सिवा उन सब ने दरिया से खूब पानी पिया। फिर जब तालूत और उसके साथी मुसलमान दरिया पार करके आगे बढ़े तो उन्होंने तालूत से कह दिया कि आज हम में जालूत और उसकी सेनाओं का मुकाबला करने की ताकत नहीं है। लेकिन जो लोग ये समझते थे कि उन्हें एक दिन अल्लाह से मिलना है, उन्होंने कहा, कितनी बार ऐसा हुआ है कि एक छोटी टुकड़ी अल्लाह की अनुज्ञा से एक बड़े गिरोह पर छा गई है। अल्लाह सब्र करने वालों का साथी है। और जब वे जालूत और उसकी सेनाओं के मुकाबले पर निकले तो उन्होंने दुआ की, ए हमारे रब, हमें अधिक से अधिक धैर्य प्रदान कर, हमारे कदम जमा दे और इस काफिर गिरोह पर हमें विजय दे।
وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
अंततः अल्लाह की अनुज्ञा से उन्होंने काफिरों को मार भगाया और दाऊद ने जालूत का वध कर दिया और अल्लाह ने उसे सल्तनत और हिकमत प्रदान की और जिन जिन चीजों का चाहा उसको इल्म दिया। अगर इस तरह अल्लाह इंसानों के एक गिरोह को दूसरे गिरोह के द्वारा हटाता न रहता तो धरती की व्यवस्था बिगड़ जाती, लेकिन दुनिया के लोगों पर अल्लाह की बड़ी उदार कृपा है कि वो इस तरह बिगाड़ दूर करने का प्रबंध करता रहता है। ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम ठीक ठीक तुमको सुना रहे हैं, और ए मोहम्मद निश्चय ही तुम उन लोगों में से हो जो संदेश वाहक यानी रसूल बनाकर भेजे गए हैं।
منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة
ये रसूल जो हमारी ओर से इंसानों को रास्ता दिखाने के लिए नियुक्त हुए, हमने इनको एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर पद प्रदान किए। इनमें कोई ऐसा था जिससे अल्लाह ने खुद बातें की, किसी को उसने दूसरी हैसियतों से ऊंचे दर्जे दिए और अंत में मरियम के बेटे ईसा को रोशन निशानियां प्रदान की और पवित्र आत्मा से उसकी सहायता की। अगर अल्लाह चाहता तो संभव न था कि इन रसूलों के बाद जो लोग रोशन निशानियां देख चुके थे वे आपस में लड़ते, मगर अल्लाह ये न चाहता था कि वो लोगों को बलपूर्वक विभेद करने से रोके। इस कारण उन्होंने परस्पर विभेद किया, फिर किसी ने माना और किसी ने इनकार की नीति अपनाई। हाँ, अल्लाह चाहता तो वे हरगिज न लड़ते, मगर अल्लाह जो चाहता है करता है। ए लोगो, जो ईमान लाए हो, जो कुछ धन सामग्री हमने तुमको प्रदान की है उसमें से खर्च करो, इससे पहले कि वो दिन आए जिसमें न खरीद बिक्री होगी, न दोस्ती काम आएगी और न सिफारिश चलेगी, और जालिम वास्तव में वही हैं जो कुफ्र की नीति अपनाते हैं।
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
الله वह जीवंत शाश्वत सत्ता जो संपूर्ण जगत को संभाले हुए है, उसके सिवा कोई इलाह यानी उपास्य नहीं है। वो न सोता है और न उसे ऊंघ लगती है। जमीन और आसमानों में जो कुछ है उसी का है। कौन है जो उसके सामने उसकी अनुमति के बिना सिफारिश कर सके? जो कुछ बंदों के सामने है उसे भी वो जानता है, और जो कुछ उनसे ओझल है उसे भी वो जानता है, और उसके ज्ञान में से कोई चीज उनके ज्ञान की पकड़ में नहीं आ सकती। ये और बात है
कि किसी चीज का ज्ञान वो खुद ही उनको देना चाहे। उसका राज्य आसमानों और जमीन पर छाया हुआ है और उनकी देखरेख उसके लिए कोई थका देने वाला काम नहीं है, बस वही एक महान और सर्वोपरि सत्ता है।
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياء
दीन के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। सही बात गलत विचारों से अलग छांट कर रख दी गई है। अब जिस किसी ने बढ़े हुए फसादी का इनकार करके अल्लाह को माना, उसने एक ऐसा मजबूत सहारा थाम लिया जो कभी टूटने वाला नहीं, और अल्लाह जिसका सहारा उसने लिया है सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। जो लोग ईमान लाते हैं उनका हिमायती और मददगार अल्लाह है, और वो उनको अंधकारों से प्रकाश में निकाल लाता है, और जो लोग इनकार की नीति अपनाते हैं उनके हिमायती और मददगार बढ़े हुए फसादी हैं, और वे उन्हें प्रकाश से अंधकारों की ओर खींच ले जाते हैं। ये आग में जाने वाले लोग हैं जहां ये हमेशा रहेंगे।
अलम तर इला लजी हज्ज इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहु अल्लाहुल मुल्क इज़ काल इब्राहीम रब्बी अल्लजी युहयी व युमीत काल अना उहयी व उमीत قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين।
क्या तुमने उस आदमी के हाल पर विचार नहीं किया जिसने इब्राहीम से झगड़ा किया था? झगड़ा इस बात पर कि इब्राहीम का रब कौन है, और इस कारण कि उस व्यक्ति को अल्लाह ने हुकूमत दे रखी थी। जब इब्राहीम ने कहा कि मेरा रब वो है जिसके अधिकार में जिंदगी और मौत है, तो उसने जवाब दिया, जिंदगी और मौत मेरे अधिकार में है। इब्राहीम ने कहा, अच्छा, अल्लाह सूरज को पूरब से निकालता है, तू तनिक उसे पश्चिम से निकाल ला। ये सुनकर वो सत्य विरोधी चकित रह गया, मगर अल्लाह जालिमों को सीधा रास्ता नहीं दिखाया करता।
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير।
या फिर उदाहरण के रूप में उस आदमी को देखो जिसका एक ऐसी बस्ती पर से जाना हुआ जो अपनी छतों पर औंधी गिरी पड़ी थी। उसने कहा, ये आबादी जो तबाह हो चुकी है, इसे अल्लाह किस तरह दोबारा जीवन प्रदान करेगा? इस पर अल्लाह ने उसके प्राण ग्रस्त कर लिए और 100 वर्ष तक वो मुर्दा पड़ा रहा। फिर अल्लाह ने उसे दोबारा जीवन दान दिया और उससे पूछा, बताओ कितने समय तक पड़े रहे हो? उसने कहा, एक दिन या कुछ घंटे रहा हूंगा। कहा, तुम पर 100 वर्ष इसी हालत में बीत चुके हैं, अब जरा अपने खाने और पानी को देखो कि उसमें जरा परिवर्तन नहीं आया है। दूसरी ओर जरा अपने गधे को भी देखो कि उसका पंजर तक जीर्ण हो रहा है,
और ये हमने इसलिए किया है कि हम तुम्हें लोगों के लिए एक निशानी बना देना चाहते हैं। फिर देखो कि हड्डियों के इस पंजर को हम किस तरह उठाकर मांस और चर्म उस पर चढ़ाते हैं। इस तरह जब वास्तविकता उसके सामने बिल्कुल स्पष्ट हो गई तो उसने कहा, मैं जानता हूँ कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है।
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ।
और वो घटना भी सामने रहे जब इब्राहिम ने कहा था कि मेरे मालिक मुझे दिखा दे तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। कहा, क्या तू ईमान नहीं रखता? उसने निवेदन किया, ईमान तो रखता हूँ मगर दिल का इत्मीनान चाहता हूँ। कहा, अच्छा तो चार पक्षी ले और उनको अपने से हिला मिला ले, फिर उनका एक एक भाग एक एक पहाड़ पर रख दे, फिर उनको पुकार, वे तेरे पास दौड़े चले आएंगे। खूब जान ले कि अल्लाह अत्यंत प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है।
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون।
जो लोग अपने माल अल्लाह के मार्ग में खर्च करते हैं उनके खर्च की मिसाल ऐसी है जैसे एक दाना बोया जाए और उससे सात बालें निकलें और हर बाल में 100 दाने हों। इसी तरह अल्लाह जिसके कर्म को चाहता है बढ़ोतरी प्रदान करता है, वो समाई वाला भी है और सर्वज्ञ भी। जो लोग अपने माल अल्लाह के मार्ग में खर्च करते हैं और खर्च करके फिर एहसान नहीं जताते न दुख देते हैं, उनका बदला उनके रब के पास है और उनके लिए किसी रंज और खौफ का मौका नहीं।
قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير।
एक मीठा बोल और किसी अप्रिय बात पर तनिक आंख बचा जाना उस दान से अच्छा है जिसके पीछे दुख हो। अल्लाह बेनियाज है और सहनशीलता उसका गुण है। ए ईमान लाने वालो, अपने दान को एहसान जताकर और दुख देकर उस आदमी की तरह मिट्टी में न मिला दो जो अपना माल सिर्फ लोगों के दिखाने को खर्च करता है और न अल्लाह को मानता है न आखिरत को। उसके खर्च की मिसाल ऐसी है जैसे एक चट्टान थी जिस पर मिट्टी की तह जमी हुई थी। उस पर जब जोर की बारिश हुई तो सारी मिट्टी बह गई और साफ चट्टान की चट्टान रह गई। ऐसे लोग अपनी दृष्टि में दान करके जो नेकी कमाते हैं उससे कुछ भी उनके हाथ नहीं आता, और काफिरों को सीधा मार्ग दिखाना अल्लाह का नियम नहीं है। इसके विपरीत जो लोग अपने माल सिर्फ अल्लाह की खुशी की चाहत में हृदय की पूरी स्थिरता के साथ खर्च करते हैं, उनके खर्च की मिसाल ऐसी है जैसे कि उच्च सतह पर एक बाग हो, अगर जोर की बारिश हो जाए तो दो गुना फल लाए, और अगर जोर की बारिश न भी हो तो एक हल्की फुहार ही उसके लिए काफी हो जाए। तुम जो कुछ करते हो सब अल्लाह की नजर में है।
أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ।
क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि उसके पास एक हरा भरा बाग हो, नहरों से सिंचित, खजूरों और अंगूरों और हर किस्म के फलों से लदा हो, और वो ठीक उस समय एक तेज बगुले के आघात में आकर झुलस जाए जबकि वो खुद बूढ़ा हो और उसके छोटे बच्चे अभी किसी योग्य ना हो। इस तरह अल्लाह अपनी बातें तुम्हारे सामने बयान करता है, शायद कि तुम सोच विचार करो।
كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب।
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے دھرتی سے تمہارے لیے نکالا ہے उसमें से अच्छा हिस्सा अल्लाह के मार्ग में खर्च करो। ऐसा न हो कि उसके मार्ग में देने के लिए बुरी से बुरी चीज छांटने की कोशिश करने लगो। हालांकि वही चीज अगर कोई तुम्हें दे तो तुम हरगिज उसे लेना न चाहोगे। ये और बात है कि उसको स्वीकार करने में तुम देखी अनदेखी कर जाओ। तुम्हें जान लेना चाहिए कि अल्लाह बेनियाज है और अच्छे गुणों से विभूषित है। शैतान तुम्हें निर्धनता से डराता है और शर्मनाक नीति अपनाने के लिए उकसाता है, मगर अल्लाह तुम्हें अपनी बख्शिश और उदार कृपा की उम्मीद दिलाता है। अल्लाह बड़ी समाई वाला और सर्वज्ञ है, जिसको चाहता है हिकमत यानी तत्वदर्शिता प्रदान करता है, और जिसे हिकमत यानी तत्व ज्ञान मिली उसे वास्तव में बड़ी दौलत मिल गई। इन बातों से सिर्फ वही लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं जो बुद्धिमान हैं।
وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ।
तुम ने जो कुछ भी खर्च किया हो और जो मन्नत भी मानी हो अल्लाह उसे जानता है, और जालिमों का कोई मददगार नहीं। अगर अपने दान खुले रूप में दो तो ये भी अच्छा है, लेकिन अगर छिपाकर मोहताजों को दो तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है। तुम्हारी बहुत सी बुराइयां इस नीति से मिट जाती हैं, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को हर हाल में उसकी खबर है।
ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم
أي نبي लोगों को रास्ते पर ला देने की जिम्मेदारी तुम पर नहीं है। रास्ते पर तो अल्लाह ही जिसे चाहता है चलाता है, और भलाई के रास्ते में जो माल तुम खर्च करते हो वो तुम्हारे अपने लिए भला है। आखिर तुम इसीलिए तो खर्च करते हो कि अल्लाह की खुशी प्राप्त हो। तो जो कुछ माल तुम भलाई के रास्ते पर खर्च करोगे उसका पूरा पूरा बदला तुम्हें दिया जाएगा, और तुम्हारा हक हरगिज मारा न जाएगा। विशेष रूप से सहायता के हकदार वे निर्धन लोग हैं जो अल्लाह के कार्य में ऐसे घिर गए हैं कि अपने व्यक्तिगत जीविकोपार्जन के लिए धरती में कोई दौड़ धूप नहीं कर सकते। उनका स्वाभिमान यानी खुददारी देखकर अनजान आदमी समझता है कि ये संपन्न हैं। तुम उनके चेहरों से उनकी भीतरी हालत पहचान सकते हो, मगर वे ऐसे लोग नहीं हैं कि लोगों के पीछे पड़कर कुछ मांगें। उनकी सहायता में जो माल तुम खर्च करोगे वो अल्लाह से छिपा न रहेगा।
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون।
जो लोग अपने माल रात दिन खुले और छिपे खर्च करते हैं उनका बदला उनके रब के पास है, और उनके लिए किसी खौफ और रंज की बात नहीं। मगर जो लोग ब्याज खाते हैं उनका हाल उस आदमी जैसा होता है जिसे शैतान ने छूकर बावला कर दिया हो, और इस हालत में उनके फंस जाने का कारण ये है कि वे कहते हैं व्यापार भी तो आखिर ब्याज ही जैसी चीज है, जबकि अल्लाह ने व्यापार को हलाल किया है और ब्याज को हराम। अतः जिस आदमी को उसके रब की ओर से ये नसीहत पहुंचे और आगे के लिए वो ब्याज खाने से बाज आ जाए, तो जो कुछ वो पहले खा चुका सो खा चुका, उसका मामला अल्लाह के हवाले है, और जो इस आदेश के बाद फिर इस कर्म को दोबारा करे वो जहन्नमी है जहां वो हमेशा रहेगा।
يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ।
الله ब्याज का मठ मार देता है और खैरात यानी दान को बढ़ाता है, और अल्लाह किसी नाशुक्रे बुरे अमल वाले इंसान को पसंद नहीं करता। हाँ, जो लोग ईमान ले आएं और अच्छे कर्म करें और नमाज कायम करें और जकात यानी दान दें, उनका बदला बेशक उनके रब के पास है, और उनके लिए किसी खौफ और रंज का मौका नहीं।
من الربا إن كنتم مؤمنين تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون
أي لوگو جو ایمان لائے ہو अल्लाह से डरो और जो कुछ तुम्हारा ब्याज लोगों पर बाकी रह गया है उसे छोड़ दो अगर वास्तव में तुम ईमान लाए हो। लेकिन अगर तुमने ऐसा न किया तो सावधान हो जाओ कि अल्लाह और उसके रसूल की ओर से तुम्हारे खिलाफ युद्ध की घोषणा है। अब भी तौबा कर लो और ब्याज छोड़ दो तो अपना मूलधन लेने के तुम अधिकारी हो। न तुम अन्याय करो न तुम्हारे साथ जुल्म किया जाए। तुम्हारा कर्जदार तंगी में हो तो हाथ खुलने तक उसे मोहलत दो और अगर दान कर दो तो ये तुम्हारे लिए अधिक अच्छा है अगर तुम समझो। उस दिन के अपमान और मुसीबत से बचो जबकि तुम अल्लाह की ओर वापिस होगे। वहां हर आदमी को अपनी कमाई हुई नेकी या बुराई का पूरा पूरा बदला मिल जाएगा और किसी के साथ हरगिज जुल्म ना होगा।
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله
ऐ लोगो जो ईमान लाए हो जब किसी निर्धारित समय के लिए तुम आपस में कर्ज का लेन देन करो तो उसे लिख लिया करो। दोनों पक्षों के बीच इंसाफ के साथ एक आदमी दस्तावेज लिखे जिसे अल्लाह ने लिखने पढ़ने की काबिलियत दी हो उसे लिखने से इनकार नहीं करना चाहिए। वो लिखे और बोलकर वो आदमी लिखाए जिस पर हक आता है अर्थात कर्ज लेने वाला और उसे अल्लाह यानी अपने रब से डरना चाहिए जो मामला तय पाया हो उसमें कोई कमी बेशी ना करे। लेकिन अगर कर्ज लेने वाला खुद नादान या कमजोर हो या बोलकर लिखा ना सकता हो तो उसका सरपरस्त इंसाफ के साथ बोलकर लिखाए। फिर अपने मर्दों में से दो आदमियों की इस पर गवाही करा लो और अगर दो मर्द ना हों तो एक मर्द और दो औरतें हों ताकि एक भूल जाए तो दूसरी उसे याद दिला दे। ये गवाह ऐसे लोगों में से होने चाहिए जिनकी गवाही तुम्हारे बीच स्वीकार की जाती हो। गवाहों को जब गवाह बनने के लिए कहा जाए तो उन्हें इनकार ना करना चाहिए मामला चाहे छोटा हो या बड़ा। अवधि के निर्धारण के साथ
उसकी दस्तावेज लिखवा लेने में सुस्ती ना करो। अल्लाह के नजदीक ये तरीका तुम्हारे लिए ज्यादा न्याय संगत है, इससे गवाही कायम होने में ज्यादा आसानी होती है और संदेहों में तुम्हारे पड़ने की संभावना कम रह जाती है। हाँ, जो व्यापारिक लेन देन हाथ के हाथ तुम लोग आपस में करते हो उसको न लिखा जाए तो कोई हर्ज नहीं, मगर व्यापारिक मामले तय करते समय गवाह कर लिया करो। लिखने वाले और गवाह को सताया न जाए, ऐसा करोगे तो गुनाह का काम करोगे। अल्लाह के गजब से बचो, वो तुम्हें सही कार्य नीति की तालीम देता है और उसे हर चीज का ज्ञान है।
وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم।
अगर तुम किसी सफर में हो और दस्तावेज लिखने के लिए कोई लिखने वाला न मिले तो गिरवी यानी बंधक रख कर मामला करो। अगर तुम में से कोई आदमी दूसरे पर भरोसा करके उसके साथ कोई मामला करे तो जिस पर भरोसा किया गया है उसे चाहिए कि अमानत अदा करे और अल्लाह यानी अपने रब से डरे, और गवाही हर गिज न छिपाओ। जो गवाही छिपाता है उसका दिल गुनाह में लथपथ है और अल्लाह तुम्हारे कामों से बेखबर नहीं है।
لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير। آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير।
آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے, तुम अपने दिल की बातें चाहे खोल दो या छिपाओ, अल्लाह हर हाल में उनका हिसाब तुमसे ले लेगा। फिर उसे अधिकार है जिसे चाहे माफ कर दे और जिसे चाहे सजा दे, उसे हर चीज पर कुदरत हासिल है। रसूल यानी ईश्वरीय संदेश वाहक ने उस मार्गदर्शन को माना जो उसके रब की ओर से उस पर उतरा है, और जो लोग इस रसूल के मानने वाले हैं उन्होंने भी उस मार्गदर्शन को दिल से मान लिया है। ये सब अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसूलों को मानते हैं, और इनका कहना ये है कि हम अल्लाह के रसूलों को एक दूसरे से अलग नहीं करते, हमने हुक्म सुना और आज्ञाकारी हुए। मालिक, हम तुझसे माफी चाहते हैं और हमें तेरी ही ओर पलटना है।
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين।
الله किसी जान पर उसकी सहन शक्ति से बढ़कर जिम्मेदारी का बोझ नहीं डालता। हर आदमी ने जो कमाई की है उसका फल उसी के लिए है, और जो बुराई समेटी है उसका बवाल उसी पर है। ईमान लाने वालों, तुम इस तरह दुआ किया करो, ए हमारे रब, हमसे भूल चूक में जो खताएं हो जाएं, उन पर पकड़ न कर। मालिक, हम पर वो बोझ न डाल जो तूने हमसे पहले लोगों पर डाले थे। रब, जिस बोझ को उठाने की ताकत हम में नहीं है वो हम पर न रख। हमारे साथ नरमी कर, हमें माफ कर दे,
हम पर दया कर, तू हमारा स्वामी है, इनकार करने वालों के मुकाबले में हमारी मदद कर।